Good evening, friends. It's a great privilege to be back here in the house of the Lord tonight, in the service, and still living.
शुभ संध्या मित्रों, ये एक महान सौभाग्य है कि यहाँ प्रभु के भवन में आज रात्रि सेवा में वापस आना और इस प्रातः के मनने से अब तक जीवित हैं कि हमारे प्राण उसकी महान उपस्थिति के द्वारा बहुत ही आशीषित हुए और अब आज रात्रि हमारे पास एक विषय आरंभ कर रहे हैं, सात कलीसियाई कालों और सात मोहरों के बीच की दूरी। और इस दोपहर बाद में एक मित्र से बातें कर रहा था और संभव है कि प्रभु की इच्छा हुई किसी समय इन गर्मियों में यदि वो मुझे घर नहीं ले जाता या मुझे वापस आना पड़े, मैं विदेश नहीं जाता या कुछ भी, तो फिर मैं फिर से अंतिम सात तुरहियों को आरंभ करना चाहूँगा। देखा, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और फिर इसमें अंतिम सात विपत्तियाँ हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं हम इन्हें देखेंगे। इसलिए आज रात्रि हम एक प्रकार से शांत हो गए हैं। हो सकता है मैं आज रात्रि थोड़ा लंबा लूं संतुलन के साथ। जैसे ही मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, अब सारे प्रचार जो मैंने फीनिक्स में किए, एक बार भी मेरा गला नहीं खरखराया। देखिए, ये ठीक बात है। और ओ, मैंने कितनी जोर से प्रचार किया, और ये क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ ये 27 सभाएं थी बिना खरखराहट के। परंतु यहाँ ये मौसम है, आप देखिए, वरन सादगी में ये यहाँ खराब है, बस एक घाटी। ये यहाँ पीछे खराब स्थिति थी और स्वास्थ्य की, और आप जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है, ये खराब है। और किसी भी प्रचारक के पास एक जो बोलता है आरंभ से ही उसका गला खराब होता है। मेरे डॉक्टर मित्र ने मेरे गले में एक बार देखा, देखने के लिए कि क्या खराबी थी। बोला, कुछ नहीं है। बोला, तुम्हारे स्वर तंत्र में कठोरता आ गई है। कहा, ये प्रचार से है। अच्छा, मैं इसी प्रकार का हूँ, आप जानते हैं। इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है जब तक ये प्रचार पर लागू होता है। आप देखिए, परमेश्वर के राज्य के लिए ये ठीक रहेगा। अब हो सकता है हम योग्य नहीं कि ये यीशु मसीह के दागों को हम अपनी देह पर लें, जैसा कि पौलुस ने किया पीटे जाने से, परंतु हम अपने निशान प्रचार से लें और अपनी आवाज उन बातों के विरोध में जो गलत है दें। इसलिए हम धन्यवादित हैं कि हमें और नहीं पिटना है, विशेषकर इस समय। इसलिए हम कितने यहाँ हैं जिन्होंने श्रीमानों क्या ये समय है पढ़ा है या इसे सुना है। आप जानते हैं श्रीमानों क्या ये समय है, इसने मुझे थोड़ा परेशान किया। यदि आपने नहीं, मेरी इच्छा है कि किसी तरह से यदि ये आपको सुनने को मिले या किसी प्रकार, एक तरह से मुझे परेशान किया। सभा को आरम्भ करने से पहले मैं इसे छोड़ देना चाहता हूँ। लगभग एक सप्ताह या 10 दिन पहले मैं बहुत ही व्याकुल था। मैं नहीं था, मैं सभाएं नहीं लूंगा या कुछ भी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये कुछ ऐसा प्रतीत हुआ, ये कुछ ऐसा है जो खराब था और मुझे नहीं मालूम कि ये क्या था। इसलिए मैं एक दिन जल्द सुबह उठा कि सबिनो कैनियन जाऊं, जो कि घर से केवल लगभग 35 मिनट की कार यात्रा पर है या 40 की। सबिनो कैनियन के ऊपर पहुंचा, तब वहां से एक सड़क 30 मील पहाड़ में जाती है। वहां एक अनजानी सी जगह, मैं यहां रेगिस्तान में हो सकता हूं, जहां ये 80 और 90 ठीक अब और 30 मिनटों में 8 फुट की बर्फ में, देखिए पहाड़ की चोटी पर। अभी हाल ही में हम फीनिक्स में थे जहां ये कुछ 20 या 28 डिग्री था। उनके गर्म होने वाले तरण ताल थे और लोग तैर रहे थे, और वहां से लगभग 35 मिनट की कार यात्रा से ये 0 से 40 नीचे फ्लैग स्टाफ पर। देखा, ये भिन्नता है ऊपर के बहाव और रेगिस्तान और दमे आदि वालों के लिए बहुत ही स्वास्थ्य वर्धक। परंतु अब मैं उस दर्रे में ऊपर चला गया और मैं वहां तक चढ़ता गया जहां तक मैं जा सकता था, और मैंने प्रभु से पूछा जबकि वहां बैठा हुआ था, इस सब का क्या अर्थ है। और इस प्रकार से मैं एक प्रकार से परेशान था और मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। और इस प्रकार से जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एक विचित्र सी चीज हुई। मैं ईमानदार रहना चाहता हूं, अब मैं सो तो नहीं सकता था। ये एक मूर्छा के समान हो सकता है या ये एक दर्शन हो सकता था। मेरा जहां तक समझना है, मैं विश्वास करता हूं कि ये एक दर्शन था कि मेरे हाथ उठे हुए थे, कह रहा था, प्रभु उस धमाके का क्या अर्थ है, और ये सात सरदूतों का झुंड पिरामिड में मुझे भूमि पर से उठा लिया और पूर्व की ओर घुमाया। इसका क्या अर्थ है? मैं वहाँ प्रार्थना में खड़ा हुआ था और कुछ घटित हुआ और अब मेरे हाथ में कुछ आ गया। और मैं जानता हूँ, यदि आप आत्मिक बातों को नहीं समझते, ये बहुत ही अजीब सा प्रतीत होता है, परंतु मेरे हाथ में कुछ आ गया और जब मैंने देखा तो ये एक तलवार थी और मूठ मोतियों से बनी थी, सुंदरतम मोती जो मैंने कभी देखे। और वो मूठ रक्षक, आप जानते हैं, जहाँ मेरा अनुमान है ये आपके हाथों को कटने से बचाता है। आप जानते हैं, जबकि लोग धुंध कर रहे थे, सोने का था, तलवार की फाल अधिक लंबी नहीं थी, परंतु ये उस्त्रे जैसी तेज थी और चांदी की चमक थी और बहुत सुंदर चीज जो मैंने कभी देखी, ये मेरे हाथ में थी, बिल्कुल ठीक आ रही थी और मैं इसे पकड़े हुए था। मैंने कहा, क्या ये सुंदर नहीं? मैंने इसे देखा और मैंने सोचा, परंतु आप जानते हैं, मैं हमेशा से तलवार से डरता हूँ। मैं एक प्रकार से आनंदित हूँ कि मैं उन दिनों में नहीं रहा जिनमें वे इसका प्रयोग करते थे, क्योंकि मैं चाकू से डरता हूँ। और इसलिए मैंने सोचा, मैं इसका क्या करूँगा? और जबकि मैंने इसे अपने हाथ पकड़े हुए था, एक आवाज ने कहीं से कहा, ये राजा की तलवार है, और फिर ये मेरे पास से चली गई। अच्छा, मुझे आश्चर्य हुआ कि इसका क्या अर्थ है। ये विशेष राजा की तलवार है, और मैंने सोचा, यदि ये कहा गया होता एक राजा की तलवार, तो ये हो सकता था कि मैं इसे समझ जाता, परंतु उसने कहा दी विशेष राजा की तलवार। इसलिए हो सकता है कि मैं सही नहीं हूँ, परंतु मैंने सोचा वो तो केवल एक ही है, दी विशेष राजा, वो परमेश्वर है, और उसकी ये तलवार है दो धारी तलवार से भी अधिक तेज। देखिए, और तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन, समझे? और मैंने सोचा द्वंद्व में, अब देखिए, जैसा मैं समझता हूँ, मैं इसका एक शब्द भी नहीं समझता, बल्कि यानी द्वंद्व का एक भी सिद्धांत, परंतु मेरी अच्छी समझ से फाल आमने सामने एक दूसरे की ओर, और फिर अंत में तलवारें, यदि वे एक दूसरे में अड़ गई तो शत्रु और आप तलवारें अड़ा देते हैं इस प्रकार से, तब ये मनुष्य जो द्वंद्व में है उनकी शक्ति पर होता है, क्योंकि देखिए, उसकी तलवार मेरी ओर, मेरे हृदय पर और मेरी उसके पर, परंतु वो अड़ी हुई है, जैसे कि हमारे चाकू एक दूसरे पर वार करते हैं और फिर वे वार करते हैं, और तब तलवारें एक साथ आती हैं, और वो जो दूसरे को धक्का देकर नीचे गिरा दे तो तलवार सीधी हृदय पर होती है, इसलिए ये लेता है वहाँ। यद्यपि तलवार वचन हो, तो वहाँ इसे विश्वास के मजबूत हाथों को पकड़ के लिए लेती है कि इसे शत्रु के हृदय पर ले आए। अब इन बातों को ना जानते हुए, परंतु जरा वो सब जो मैंने उससे पाया है वो मैं बता सकता हूँ। मैंने आपको बता दिया ताकि आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ यही था। क्या हमारे प्रभु ने नहीं कहा था, वो सब जो उसने पिता से पाया है, जो उसने बताया था, और कुछ भी ना छिपाया, और इसलिए हम उन बातों को करना चाहते हैं ठीक जैसे वे आती हैं। अब यदि आप वास्तव में बुद्धिमान होंगे और प्रार्थना करते हैं, तो मैं निश्चित हूँ कि आप बहुत जल्द ही कुछ समझ जाएंगे। अब कुछ जो कि मैं आशा करता हूँ कि प्रकट हुआ है। अब इस पुस्तक में आइए, हम सब निकालें पुस्तक का पांचवा अध्याय, जो कि यीशु मसीह का प्रकाशन कहलाती है। अब कल आने वाली रात्रि में पहली मोहर, जो कि पहली चार मोहरें खुली हैं, चार घुड़सवारों के द्वारा, प्रत्येक मोहर पर एक जो पृथ्वी पर प्रहार करती है, और फिर संभव है उन्हें अधिक समय नहीं लगेगा जब तक कि हम लगभग निकाल नहीं देते, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार के लगभग, तब मैं समझता हूँ कि छठी पर और पांचवी, छठी और सातवीं मोहर संभवतः अधिक लंबी होंगी, इसलिए हो सकता है ये आपको थोड़ा समय देगी कि थोड़ा सा विश्राम ले लें। हमारा उद्देश्य सभाएं आरंभ करने का है। मैं विश्वास करता हूँ सप्ताह की रात्रियों में 7 बजे और मुझे प्रचार मंच पर ठीक 7:30 बजे होना है, और फिर हो सकता है कि हम आधी रात तक बाहर आएं। इसलिए मैंने आज प्रातः एक घंटा अधिक लिया। मेरा ये मतलब नहीं, मैं नहीं जानता कब, क्योंकि मैं नहीं जानता कि पहला घुड़सवार क्या है, मैं नहीं जानता कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां या सातवीं मोहर, मैं इस घड़ी मैं नहीं जानता, समझे? मैं बस उस पर निर्भर कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस सप्ताह भर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यत्न करता रहा कि सहायता करे। ये विश्वास करते हुए यदि आप गहराई से समझें, आप जानते हैं दर्शनों में आप बातों को प्रकट नहीं कर सकते जब तक आपको प्रकट करने की अनुमति न मिले। कितनी बार आप सब लोगों ने मुझे कहते सुना, घर जाएं, संभवतः एक टोपी यहाँ रखी है और ये विशेष बालक या ऐसा ही जब तक चंगा नहीं होगा जब तक ये वहाँ यहाँ रखी रहेगी। मैं उन्हें नहीं बता सकता, न ही मैं उसे वहाँ से हटा सकता हूँ। इसे हटना ही है, किसी भी प्रकार से किसी और को ही इसे लेकर और इसे हटाना है, और हर चीज क्रम में, तब ये प्रकट हो सकता है। इसलिए अब हम प्रार्थना में रहें। अब इसके पहले कि हम पुस्तक को लें, आइए हम उससे बातें करते हैं अपने झुके हुए सिरों के साथ। प्रभु यीशु, कुल मिलाकर अयोग्य हैं। हम किसी भी प्रकार से ये यत्न नहीं करेंगे कि इस पवित्र पुस्तक पर पहुंच करें, इस बहुत ही पवित्र घड़ी में जो कि प्राण समय के गंतव्य पर अटके हुए हैं। प्रभु, बगैर आपके पूछे कि केवल एक ही है जो इस पुस्तक को प्रकट कर सकता है, कि वो सामने आए, हमारे कमजोर कोशिशों को आशीषित करे और तेरे दास की, जैसे जैसे ये वचन आगे बढ़ता है इसे आशीषित करें, होने पाए ये आत्मा के सामर्थ्य के साथ जाए और होने पाए ये आत्मिक आधार, वे जो भूखे और प्यासे हैं कि धार्मिकता को जाने और परमेश्वर की इच्छा को जाने, होने पाए ये वहाँ गिरे और अपने ही प्रकार का उत्पन्न करे। प्रभु, इसे प्रदान करें, सारी महिमाएं आपकी हैं, होने पाए भूखे और प्यासे भोजन पाए और आज रात्रि वचन से पिए, ये हम यीशु के नाम में मांगते हैं जिसका ये प्रकाशन है, आमीन। अब हम पांचवा अध्याय निकालने जा रहे हैं। अब ये सात मोहरे नहीं हैं, ये कलीसियाई कालों और सात मोहरों के बीच की दूरी है। अब वहाँ का छठवां अध्याय भी है, और बल्कि वहाँ चौथा अध्याय था प्रकाशित वाक्य का, और उसमें एक प्रकार से कुछ प्रकट किया गया जो कि कलीसिया के चले जाने के बाद घटित होगा। ये कि कलीसिया प्रकाशन के तीसरे अध्याय में ऊपर चली जाती है और प्रकाशन के 19वें अध्याय तक वापस नहीं आती, समझे? इसलिए कलीसिया संकट कष्टों से चूक जाती है। मैं जानता हूँ कि ये लगभग हर शिक्षक के विरोध में है जिनसे मैंने कभी बातें की, परंतु मैं मेरा अर्थ असहमत होने से नहीं है, पर मेरा अर्थ आपका भाई होने से, परंतु मुझे वही सीखना है जैसा कि मैं ये देख सकता हूँ, यदि नहीं तो मैं इसे एक साथ नहीं रख सकता। आप देखिए, और अब चाहे ये मुसीबतों से पहले या मुसीबतों के बाद में जाए, मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ, ये विशेष बात है। इसलिए उन बातों को हम बस मान लेते हैं, क्योंकि बिना शिक्षा के मैं प्रतीक में देखता और दिखाता हूँ क्या है या पुराने नियम में क्या रहा जो कि एक प्रतीक या एक नए नियम की एक छाया है, तब मेरे पास कुछ विचार आता है कि नए में क्या है। समझे? जैसा कि यदि नूह मुसीबतों से पहले वो नाव में चला गया था, एक प्रतीक, परंतु इसके भी पहले नूह, देखिए, नाव में जाता, हनोक ऊपर चला गया, देखिए, इसके पहले कि कुछ भी घटित होता और लूत को सादोम से बाहर बुला लिया गया, इसके पहले कि मुसीबत की जरा सी बात नष्ट होने की होती, परंतु अब्राहम सारे समय इससे बाहर था, इसके बाहर, प्रतीक देखिए। परंतु अब हम पहला पद पढ़ेंगे और हम इसके पहले दो या तीन पद पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो सात मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। क्या ही पुस्तक है ये।
तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने योग्य कोई मनुष्य न मिला। अब आप अयोग्यता के विषय में बात करते हैं, इस योग्य भी नहीं कि उसे देखे, कहीं भी कोई मनुष्य नहीं। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहर के तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके सात सींग और सात आंखें थी। ये परमेश्वर की सात आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। हम वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, प्रकाशन पांच से पढ़ते हुए नीचे सातवें पद को मिलाकर। ये सात मोहर की पुस्तक प्रकाशन दस के सात गर्जनों के समय में प्रकाशित हुई। अब यदि आप इस पर निशान लगा रहे हैं, आइए प्रकाशित वाक्य दस निकालें एक क्षण के लिए, ताकि आपको इसकी समझ मिलेगी इसके पहले कि हम इसमें जाएं। अब ये अंत के समय में है, इस कारण सुनिए। मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सर पर मेघ धनुष था। यदि आप ध्यान दें तो ये मसीह है। देखिए, क्योंकि वो पुराने नियम में वाचा का दूत कहलाया था और वो अब सीधा सीधा यहूदियों के पास आया, क्योंकि कलीसिया समाप्त हो गई है, समझे? ठीक है। और मुंह से सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। आपको याद है वो दूत प्रकाशित वाक्य एक में? वही चीज, दूत एक संदेशवाहक और वो इसराइल के लिए संदेशवाहक, समझे? कलीसिया उठाई जा चुकी है, देखिए, अब यह उठाए जाने के लिए तैयार है। वो अपनी कलीसिया के लिए आता है। अब ध्यान दें, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। अब यहाँ ये बंद थी और मोहर लगी हुई, और यहाँ ये खुली है, ये खोल दी गई। उस मोहर बंद होने के समय से आज रात्रि हम इसमें जा रहे हैं, अब पुस्तक खुली हुई है। एक छोटी पुस्तक उसके हाथ में है, उसके ये खुली थी। ओ कैसे सूर्य जैसे खम्भों, एक मिनट रुकी है, मुझे यहाँ से आरंभ करके पढ़ने दें। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। हम जानते हैं वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। यहाँ पर वो मेमना है, परंतु यहाँ सिंह है, समझे? जब वो चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। अब यूहन्ना को लिखने का अधिकार दिया गया था, उसने देखा, इसलिए चेला और भविष्यद्वक्ता अपनी कलम से इसे लिखने के लिए उठाई। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन सात शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। अब ये जो हम नहीं जानते, ये अभी प्रकट होनी है, ये पवित्र वचन में नहीं है। तो फिर गर्जने क्या कहती हैं? जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। अब सुनिए, और जो युगन युग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को जो कुछ उस पर है और समुद्र को जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो देर ना होगी। ध्यान दें, यहाँ वो पद है जिसे मैं लेना चाहता हूँ, वरन सातवें दूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। अब देखिए, सात मोहर की पुस्तक का भेद सातवीं कलीसियाई के दूत के संदेश देने पर प्रकट होगा। समझे, सातवां दूत शब्द देना आरंभ करता है और वहाँ एक संदेश लिखा हुआ है और हमारे पास टेप और पुस्तक के रूप में है। अब संदेश देने के आरंभ में परमेश्वर का भेद समाप्त हो जाना चाहिए। देखिए, उस समय अब हम ध्यान देंगे, परमेश्वर के भेद की पुस्तक प्रकट नहीं हुई है जब तक सातवें दूत का संदेश नहीं आ जाता। अब ये बातें मोहरों में विशेष होंगी, मैं निश्चित हूँ, क्योंकि ये होना ही चाहिए। हर बिंदु एक साथ बंधा है। अब ये भेदपूर्ण लिखा है क्योंकि कोई मनुष्य कहीं भी इसे नहीं जानता, केवल परमेश्वर यीशु मसीह। देखा, अब परंतु ये पुस्तक, ये भेद भरी पुस्तक है, ये एक छुटकारे की पुस्तक है। थोड़ी देर में हम इसमें जाएंगे और अब हम जानते हैं कि ये छुटकारे की पुस्तक पूरी रीति से नहीं समझी जाएगी। छह कलीसियाई कालों में इसकी छानबीन हुई, परंतु अंत में जब सातवां दूत उसने इसके भेद का शब्द देना आरंभ किया, उसने सारे सिरे सुलझा दिए जिनकी लोगों ने छानबीन की और भेद परमेश्वर की ओर से नीचे आए, परमेश्वर के वचन के समान और परमेश्वर के सारे प्रकाशन को प्रकट कर दिया, तब परमेश्वरत्व और हर चीज तय हो गई, सारे भेद, सर्प का वंश और जो भी है और जो था प्रकट होना था। अब आप देखिए, मैं इसे तैयार नहीं कर रहा हूँ जो कि ये यहोवा यूं कहता है, मैं पुस्तक में से आपको पढ़ दूंगा, सातवें दूत का संदेश देना, परमेश्वर का भेद समाप्त हो जाना चाहिए जो कि उसके पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रचारा गया, वे भविष्यद्वक्ता जिन्होंने वचन लिखे सातवीं कलीसियाई काल के प्रचार पर, अंतिम कलीसियाई काल में सारे अधूरे अंश जिनकी सात कलीसियाई कालों में ढूंढ ढांड की गई, सारे समाप्त हो जाएंगे। और जब मोहरें टूटी और भेद खोले गए, स्वर्गदूत नीचे आया, संदेशवाहक मसीह अपना पैर भूमि पर और समुद्र पर रखा, मेघधनुष उसके सिर पर था। अब याद रखें, ये सातवां दूत पृथ्वी पर है इस आगमन के समय। ठीक जैसे यूहन्ना अपना संदेश दे रहा था, उसी समय उन दिनों में मसीह आ गया। यूहन्ना को मालूम था कि वो उसे देखेगा, क्योंकि वो उसका परिचय कराने जा रहा था। और हम वचनों में ये अनुभव करते हैं कि मलाकी चार में वहाँ एक यूहन्ना के समान होना है, एक एलिया जिसके पास परमेश्वर का वचन आ सकता है और उसे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सारे भेदों को प्रकट करना होगा और बालकों के विश्वास को वापस प्रेरित पूर्वजों की ओर फेरना होगा, इन सारे भेदों को वापस लाना होगा जिनकी खोज इन सारे नामधारियों के वर्षों में की गई। अब यही जो वचन ने कहा, मैं केवल जो कहा गया उसका उत्तरदायी हूँ। समझे, ये लिखा है, ठीक है, यही जो ये है। अब हम देखते हैं ये सात मोहर की पुस्तक अब छुटकारे का भेद है, ये परमेश्वर की ओर से छुटकारे की पुस्तक है। अब इस सारे समय भेद इस संदेशवाहक के प्रचार में समाप्त हो जाने चाहिए। अब दूत यहाँ पृथ्वी पर है और दूसरा स्वर्गदूत सामर्थी संदेशवाहक नीचे उतर कर आया और ये पृथ्वी का संदेशवाहक दूत है, परंतु यहाँ एक स्वर्ग से उतर कर आता है, एक मेघ धनुष की वाचा। देखिए, ये केवल मसीह हो सकता है।
ठीक वैसा ही जैसा प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में सात सुनहरे दीवटों के बीच में मेघ धनुष के साथ खड़ा है, सूर्यकांत और सारदीन सा दिखाई पड़ता है, और यहाँ वो दसवें अध्याय में वापस आता है उस समय के बाद कि सारे भेद समाप्त होने और मोहरें टूटने पर हैं, और ये घोषणा करते हुए कि समय और नहीं है। और उसने कहा जब सातवें दूत ने शब्द देना आरंभ किया तब भेद समाप्त हो जाने चाहिए और स्वर्गदूत के प्रकट होने का समय। हम कहीं बहुत समीप हैं, ठीक है। अब ध्यान दें, सात मोहरें पुस्तक के भेद को रखती हैं, जब तक हम इसे नहीं देख सकते कि उन सात मोहरों में क्या मोहर बंद है। हम केवल उन चीजों का अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है इस प्रातः के छोटे से संदेश में, इस प्रातः परमेश्वर सादगी में छुपा हुआ है। आप देखिए, हम लोग निश्चय ही बात में चूकते हैं जब तक कि ये पूरी रीति से वास्तव में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट ना हो और उसका समर्थन करे, समझे। यदि भविष्यद्वक्ता उठता और आपको ये बताता है कि ये बस ये है और परमेश्वर उस चीज का समर्थन ना करे तो इसे भूल जाए, समझे। परंतु परमेश्वर को हर वक्तव्य में, हर चीज में इसको समर्थन देना है कि इसे सही ठहराए, समझे, ताकि उसके बालक इन चीजों पर ध्यान देंगे और सावधान हों। ध्यान दें, पुस्तक पर सात मोहरें, इन सात मोहरों ने पुस्तक को मोहर बंद किया है, समझे। पुस्तक पूरी रीति से मोहर बंद है, क्या आप ये देखते हैं? पुस्तक पूरी रीति से मोहर बंद पुस्तक है जब तक कि सात मोहरें ना टूटें। ये सात मोहरों से मोहर बंद है, अब ये सात गर्जनों से भिन्न है, समझे। ये सात मोहरों पुस्तक पर हैं और पुस्तक नहीं होगी, मोहरें सातवें दूत के संदेश के प्रचार तक नहीं खुलेगी, देखा। इसलिए हम अनुमान लगा रहे हैं, परंतु परमेश्वर का सच्चा प्रकाशन उसके प्रचार में सिद्ध होगा, प्रमाणित किया हुआ सत्य। अब ठीक यही है जो वचन कहता है, भेद उस समय खुल जाने चाहिए। और ये सात मोहर की पुस्तक, याद रखें, ये यहाँ बंद है, यहाँ प्रकाशित वाक्य के पांचवें अध्याय में और प्रकाशित वाक्य दसवें अध्याय में ये खुल गई। और अब हम यहाँ ये देखने जा रहे हैं कि पुस्तक क्या कहती है और इस विषय में कि कैसे खुल गई। और जब तक मेमना पुस्तक को नहीं लेता, इसकी जानकारी नहीं होती और मोहरों को तोड़ता है और पुस्तक को खोलता है, समझे। मेमने को पुस्तक लेनी ही है, ये छिपी हुई है। अब याद रखें, स्वर्ग में कोई मनुष्य नहीं, पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं, पोप, बिशप, कार्डिनल, राज्य का प्रेस्बिटर या वो जो कोई भी है, उन मोहरों को नहीं तोड़ सकता या पुस्तक को प्रकट करे सिवाय मेमने के। हमने ढूंढ ढांड की, अनुमान लगाए और ठोकर खाई और आश्चर्य किया, और यही कारण है कि हम इस प्रकार से एक भ्रम में हैं। परंतु इस दिव्य प्रतिज्ञा के साथ कि ये छुटकारे की पुस्तक मेमने के द्वारा सिद्ध रीति से खोली जाएगी और मोहरे मेमने के द्वारा तोड़ी जाएंगी इन अंत के दिनों में जिनमें अब हम जी रहे हैं, और ये तब तक प्रकट नहीं हुई जब तक कि मेमने ने पुस्तक नहीं ली और मोहरों को तोड़ा, क्योंकि याद रखें, पुस्तक उसके हाथों में थी जो सिंहासन पर बैठा था, और मेमना उसके पास आता है जो सिंहासन पर बैठा है और उसके दाहिने हाथ से पुस्तक लेता है,
और ये गहरी बात है। हम इसे यदि कर सके तो सुलझाने का यत्न करेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से। अब हम उस पर निर्भर हैं और हम इसे बाद में देखेंगे। ये अंत के समय में है जब समय समाप्त हो गया। किसी भी नामधारी को इस पुस्तक के अनुवाद की अनुमति नहीं है। किसी मनुष्य को अधिकार नहीं कि इसका अनुवाद करे। ये मेमना है जो इसका अनुवाद करता है और मेमना ही है जो इसको बोलता है। मेमना ही वचन को प्रकट करता है समर्थन के द्वारा और वचन को जीवन में लाता है। समझे? ठीक यही बात है। ध्यान दें, ये तब तक प्रकट नहीं हुई, ये पुस्तक तब तक प्रकट नहीं हुई जब तक कि कलीसियाई काल और नामधारी युग समाप्त नहीं हो गए और फिर और समय न रहा। इसे समझें, ये केवल कलीसियाई युगों और नामधारी युगों के बाद प्रकट हुई।
यही कारण है कि चीजें आज रात्रि इस प्रकार के नैतिक संकोच में हैं। देखिए, उन्होंने एक छोटी शिक्षा ली और वे एक और निकल गए कहते हुए ये यही है। दूसरे वालों ने दूसरी शिक्षा ली और उस ओर निकल गए, कहा ये यही है। और प्रत्येक ने इसी अधीनता में एक नामधारी बना लिया जब तक कि सैकड़ों नामधारी नहीं हो गए। परंतु फिर भी इस सारे में भ्रम को देखते हैं, लोग भटक रहे हैं कि सत्य क्या है यदि आज ये इस प्रकार की स्थिति नहीं है। लेकिन तब उसने ये प्रतिज्ञा दी, जब समय समाप्त हो गया है तब सातवें दूत का शब्द होगा और तब पुस्तक प्रकट की जाएगी। देखिए, उस समय में अब कोई ये ना कहे कि वे लोग पहले वाले नहीं बचे, परंतु भेद जो वे नहीं समझ सके कि कैसे परमेश्वर तीन में हो सकता है और फिर भी एक है। वचन ये कैसे कह सकता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और पलट कर कहता है यीशु के नाम में बपतिस्मा दो। समझे?
बहुत सारी बातें। कैसे हवा एक सेब खा सकती और सारे संसार को नष्ट होने का कारण हो गई? समझे? ये बातें कैसे हो सकती हैं? परंतु इन भेदों के लिए अंत समय में खुलने की प्रतिज्ञा दी गई है।
ये छोटे छोटे अधूरे अंश जो ये महान योद्धा दृश्य में आए, जैसे कि इरेनियस और मार्टिन, संत मार्टिन और पॉलिकार और अलग अलग और लूथर और वेस्ली और वे सारे, समझे? और कैसे वे आए और पर्याप्त जीवन जिया कि विभिन्न ज्योतियां लाए और चमकाई, परंतु वे बहुत सारी चीजें अंधकार में छोड़ गए। पेंटिकॉस्टल युग आता है जैसे लूथरन युग और वे एक और को निकल गए, परंतु फिर भी सही। ये नहीं कहता हूँ कि वे सही नहीं थे, वे थे, परंतु फिर भी अधूरे अंश रह गए जिनकी व्याख्या नहीं हो सकी। परंतु तब उनमें क्यों मोहरे टूटी नहीं थी कि इनको पूरी तरह से प्रकट करें कि ये चीजें क्या हैं? समझे? परंतु अंत के युग में ये सारे भेद सुलझ गए और दे दिए गए और मोहरे मेमने के द्वारा खोली जानी थी और कलीसिया पर प्रकट होनी थी और फिर समय और ना बचेगा। समझे? कितना अद्भुत है ये। तब पुस्तक, तब छुटकारे की पुस्तक, क्योंकि फिर ये आगे बढ़ती है और हम इसे बाद में लाएंगे कि कैसे 144,000 अंदर लाए गए और आदि आदि। ठीक है, ये यहूदी हैं। अब पौलुस, आइए हम थोड़ा सा पढ़ें। मेरे पास ये थोड़े से वचन हैं और मैं सोचता हूँ कि हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। अब आइए हम सब निकालें पौलुस इफिसियों 1 में। मैं देखता हूँ कि उनमें से बहुत से लिख रहे हैं, उनके पास उनकी कॉपियाँ हैं और वचनों को लिख रहे हैं, अपनी बाइबलों में निशान लगा रहे हैं एक निरंतरता के लिए। इसलिए ये अच्छा है कि आपका ऐसा करना मुझे अच्छा लगता है और फिर घर जाकर इसका अध्ययन करें। समझे? और यदि आप स्वयं इसका अध्ययन करते हैं तो आप इसे भली प्रकार से समझेंगे। समझे? इसका अध्ययन करें और परमेश्वर से समझने के लिए सहायता मांगें। अब आइए एक एक वचन पढ़ें। मैंने यहाँ लिख रखा है इफिसियों 1:13-14। अब और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी।
which is the earnest of our inheritance until
वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अब जबकि हम वचनों को खोलते हैं, आइए हम देखिए, पवित्र आत्मा यहाँ स्वयं में एक मोहर है। पवित्र आत्मा एक मोहर है और एक मोहर दिखाती है क्या, एक पूरा किया गया कार्य। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की मोहर होने के नाते, और उस व्यक्ति को जब वो पवित्र आत्मा पाता है तब उसके कर रहने का समय समाप्त हो गया। देखिए, क्योंकि ये एक समाप्त किया हुआ कार्य है। जैसे कि मैं एक रेल रोड कंपनी के लिए काम किया करता था, और हम उस बड़े बॉक्स को, डिब्बों और दूसरी चीजों को लादा करते थे उस डिब्बे के कारखाने से, और परंतु फिर भी इसके पहले उस बड़े बॉक्स को मोहर बंद करें, इंस्पेक्टर ये देखने को आता कि उसमें ठीक से लादा गया है कि नहीं। यदि नहीं, पहली बार ये आपस में किसी चीज से टकरा गए, ये सामान को बखेरे और तोड़ देगा, और जिम्मेदारी रेल रोड कंपनी की थी, और इंस्पेक्टर हर चीज की जांच करेगा ये देखने के लिए कि हर चीज ठीक से रखी गई है। यदि ऐसा नहीं था, वो इसे बॉक्स को दोषी ठहराता है, तब हमें इसे सारे को फिर से करना होता था जब तक कि इंस्पेक्टर संतुष्ट न हो जाए, और तब जब इंस्पेक्टर संतुष्ट हो जाता, इंस्पेक्टर दरवाजा बंद कर देता, और तब इंस्पेक्टर उस पर मोहर लगाता, और फिर उसे कोई और नहीं तोड़ सकता था जब तक कि वो अपने गंतव्य तक न पहुंच जाए। यही है जो पवित्र आत्मा कर रहा है, समझे। वो जाता और वो जांचता है। यही कारण है कि आपके पास ये चीजें नहीं हो सकती, और आप कहते हैं मैं भाषाओं में बोला, मैं चिल्लाया और मैं आत्मा में नाचा। इन बातों का इससे कोई मतलब नहीं, समझे। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति की जांच करता है जब तक कि वो पूरी रीति से संतुष्ट ना हो जाए, और जान ना ले कि ये लोग, तब वे अपने अनंत गंतव्य के लिए मोहर बंद हो जाते हैं। वहाँ कुछ नहीं है जो उस मोहर को कभी तोड़ सके। बाइबल, आप अपने वचन लिख रहे हैं, इफिसियों 4:30 ने कहा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिससे कि तुम अपने छुटकारे के दिन तक के लिए मोहर बंद किए हुए हो। छुटकारे शब्द को पकड़ लें, देखिए, उस दिन तक के लिए जब तक छुटकारे की पुस्तक प्रकट नहीं हुई, और छुड़ाने वाला अपनी मीरास का दावा करने को आता है, इसे कुछ नहीं कर सकता, समझे। इसे शोकित ना करें, टिके उन चीजों को करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं, क्योंकि पुस्तक मोहर बंद है अब, और आप मोहर बंद हैं। पवित्र आत्मा स्वयं ही एक मोहर है, मोहर प्रकट करती है। अब ये शब्द मुझे शब्दकोश से मिला है, मोहर समाप्त किए हुए कार्य को दर्शाता है, और जब सातवीं मोहर तोड़ी गई तो परमेश्वर का भेद जो इन भेद भरी मोहरों में था समाप्त हो गया। जिस दिन तक मोहर नहीं तोड़ी गई, और तब ये प्रकट किया गया कि इन मोहरों के अंदर क्या था। कहें कि मनुष्य आश्चर्य करे कि इस बड़े बॉक्स में क्या है, मान सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो, वहाँ एक मान लेना है, वो अनुमान लगा रहा है। परंतु जब मोहर टूट गई और दरवाजा खुला है, तब हम उसमें देखते हैं, और बिल्कुल ठीक देखते हैं कि अंदर क्या है। आप इसे समझे, और ये केवल अंत के समय में होगा। दूसरी चीजें जो मोहर दर्शाती है वो स्वामित्व है। देखिए, उस पर मोहर दी हुई है, स्वामित्व को दर्शाती है। जब आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हो, और पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंद किए गए हो, तो आपका संसार से संबंध नहीं है, या कोई चीज जो संसार की है। परमेश्वर के द्वारा आप अपना लिए गए हैं। दूसरी बात है कि एक मोहर एक सुरक्षा। मोहर का अर्थ है आप सुरक्षित हैं। अब आप लोगों को जो अनंत सुरक्षा में विश्वास नहीं रखते, मैं नहीं जानता, देखिए, परंतु एक मोहर गंतव्य तक एक सुरक्षा को दर्शाती है। हाय है उस मनुष्य पर जो उसे तोड़ने का यत्न करता है उस मोहर को, और पवित्र आत्मा की मोहर तोड़ी नहीं जा सकती। आप सबने मुझे ये कहते सुना होगा कि लोगों ने कहा कि शैतान ने मुझसे ये करवा लिया। नहीं नहीं, शैतान ने ये नहीं किया। आप मोहर बंद नहीं थे, क्योंकि जब आप मोहर बंद हो जाते हैं तो वो बाहर की ओर मोहर हो जाता है। जी हाँ, समझे? अब आप उसके पास बाहर गए, ओ वो आपके पास अंदर नहीं आ सका, क्योंकि केवल एक ही मार्ग है कि आपके अंदर आए, उसी विधि के द्वारा आए जो आपके पास है। उसे भी बचना होगा। पवित्रकरण हुआ और पवित्र आत्मा से भर गया, तब वो आपका भाई होगा। इसलिए आप देखिए, उसने ये नहीं किया, नहीं नहीं, आप बस किनारे की रेखा पर चले गए और वापस आए। संसार की चीजों के लिए लालसा, आप कभी भी पूरी रीति से कनान में नहीं गए। आप देखिए, यर्दन के पार अपने में मर जाना, समझे? अब ध्यान दें, अब ये पुस्तक मोहर बंद है और आप पुस्तक के साथ मोहर बंद हैं उस छुटकारे के दिन तक। फिर से रोमियो 8:22-23 इसे लेते हैं और हम ये भूमिका देंगे, तब मैं सोचता हूँ कि हम ये समझ जाएंगे थोड़ी अच्छी तरह, यदि हर एक व्यक्ति से अपने लिए पढ़े। मैं यहाँ थोड़े से वचन दे रहा हूँ इसलिए ताकि हम सकें इनकी ओर देख सकें, और जबकि घड़ी अब भी युवा है। अब 8 रोमियो 8:22 आरंभ से आरंभ, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर के कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। ओ प्रभु, क्या ये हमें पुराने लोग नहीं बनाता कि अच्छा लगे? इसे हमें अच्छा अनुभव कराना चाहिए। इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये पहले पुनरुत्थान पर घटित होगा, समझे? प्रकृति कहर रही है, हम कहर रहे हैं, हर चीज कहर रही है, क्योंकि हम ये अनुभव कर रहे हैं कि कहीं कुछ सही नहीं है। और केवल एक ही विधि है कि आप कहर रहे हैं और इसकी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वहाँ एक नया जीवन है जो यहाँ आ रहा है, जो कि नए संसार की बात करता है। जैसा कि अधिक समय नहीं हुआ, पत्नी यहाँ, हम यहाँ सुपर बाजार में गए और मैंने कहा, हमने एक अजीब चीज पाई। एक महिला ने वस्त्र पहन रखे थे और ये इतना विचित्र था। देखिए, वे लगभग सारे वस्त्र नहीं पहनते, आप देखिए, और कैसे भी वे भुलक्कड़ हैं, वे उनके बिना ही चले जाते हैं। इसलिए तब हम, वे जानबूझकर भुलक्कड़ हैं। और इसलिए तब मैडम ने मुझसे कहा, वो बोली, बिली ये ऐसा क्यों है? उसने कहा, ओ, मैंने कहा ये बस राष्ट्र की आत्मा है। और मैंने कहा, जब आप जर्मनी जाते हैं उनकी एक विशेष आत्मा है, फिनलैंड जाएं उनकी एक राष्ट्र की आत्मा है, आप अमेरिका आए हमारी एक राष्ट्र की आत्मा है, हमारे राष्ट्र की आत्मा आमोद प्रमोद चुटकुले आप जानते हैं क्यों? हमारी नेव प्रेतों की शिक्षा पर रखी गई है, हमारी स्थापना महान मनुष्यों जैसे वॉशिंगटन लिंकन की अगुवाई में हुई है, परंतु हम उस नेव से हट गए हैं और हम जानते हैं इस आने वाले को हमने लिया है। हम जानते हैं कि परमाणु बम के ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि आगे हमारे लिए गुलामी रखी है। हमें आवश्यकता है कि आप अपने को मूर्ख बनाएं। ये मुझे याद दिलाता है जैसे कुछ ये हंसाने वाले नीचे जाकर चुटकुले सुना रहे थे, चल रहा है और स्त्रियां चल रही थी जैसा वो करती हैं और पुरुष कुल मिलाकर। ये मुझे एक छोटे लड़के की याद दिलाता है जो कब्रिस्तान में से सीटी बजाता हुआ जा रहा था, अपने को ये विश्वास दिला रहा था कि वो डरा हुआ नहीं है। निश्चय ही वो डरा हुआ है, समझे? वो किसी और को मूर्ख नहीं बना रहा है, इसलिए वो सीटी बजा रहा है, समझे? वो ये कहने का यत्न कर रहा है कि वो डरा हुआ नहीं है, परंतु वो है और आज यही मामला है। परंतु वो विश्वासी के लिए क्या ही धन्य आशा है जो कि हाथ उठाना, क्योंकि हमारा छुटकारा निकट आ रहा है। जब वो इन बातों को प्रकट होते देखता है तो विश्वासी के लिए ये एक महान समय है। अब ये चीजें जो हमारी देह में कह रही हैं, क्या आपने कभी पेड़ पर ध्यान दिया कि वो कैसे जीवन के लिए संघर्ष करता है? ये जीना चाहता है। और आपने पशु पर ध्यान दिया कैसे वो मृत्यु में वो संघर्ष करता है। आपने मनुष्यों हर चीज की प्रकृति कह रही है, हम अपने में कह रहे हैं, समझे? हम जानते हैं कि कुछ गलत है। हम इन पदों से देखते हैं कि कुछ है जो खो गया है, मनुष्य और पृथ्वी दोनों का। सब प्रकार की सृष्टि ने कुछ खो दिया, क्योंकि हम उसके प्रेरणा के वचन से देखते हैं कि ये किसी कारण से कह रही है। आप तब तक नहीं कहते जब तक कि इसका कोई कारण ना हो। जैसा कि मैंने स्याही के विषय में बोला, ये एक कारण है। इसी प्रकार से बीमारों के लिए प्रार्थना करने में जब तक आप कारण नहीं जान लेते, मैं इलाज जानता हूँ, परंतु मुझे कारण मालूम करना है। इसी कारण दर्शनों की आवश्यकता होती है और प्रमुख है। ये हृदय के भेद को प्रकट करता है और व्यक्ति को बताता है कि तूने कहाँ गलती की है और क्या करना है, समझे? कोई मतलब नहीं आप कितनी भी दवाई ले लें और कितना भी तेल उनके सरों पर उंडेल दें और कोई आपके ऊपर कितनी भी जोर से चिल्लाए, यदि वहाँ कुछ गड़बड़ है वो वहीं पड़ा रहेगा। मैंने कहा वो शैतान है। देखिए, आज जैसे कि दवाइयों में हमने प्रगति कर ली है, हम अभी इन बातों के विषय में नहीं जानते। आप कहते हैं वो उसे कैंसर हो गया, भाई वो कुछ नहीं है, ये बस नाम है जो ये है। ये चिकित्सा जगत का नाम है कैंसर, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं कि ये क्या है। ये तो वो नाम है जिससे हम पुकारते हैं, हम केवल इसका नाम लेते हैं कैंसर, परंतु वास्तव में क्या है इसका विश्लेषण, ये एक शैतान है। अब हम कहते हैं पाप, हम इसे पाप कहते हैं। विश्लेषण करें, पाप क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं पीना, व्यभिचार। नहीं नहीं, ये तो पाप के फल हैं, ये तो पाप का कारण है। देखिए, परंतु वास्तविक पाप अविश्वास है। यही जहाँ ये है, यही जहाँ से इसे नाम दिया गया और कहलाया। यदि आप एक विश्वासी हैं, आप इन चीजों को नहीं करेंगे। परंतु कोई मतलब नहीं आप अपने आप को कितना पवित्र बनाएं और कितने धार्मिक होने का यत्न करें, यदि आप इन चीजों को करते हैं तो आप एक अविश्वासी हैं। ये वचन के अनुसार है। अब कुछ खो गया है और ये कहना है, ये वापस जाने का यत्न कर रहा है, अपनी मूल अवस्था में वापस जाने का। क्या आप कल्पना करेंगे कि कोई जमीन के नीचे कहीं गहरे गड्ढे में गिर गया और संघर्ष कर रहा है, चढ़ रहा है, खींच रहा है? उन्हें चाहिए कि किसी भी प्रकार से गड्ढे से बाहर आ जाए, वे अपनी मूल अवस्था में नहीं है और व्यग्रता पूर्वक वे चिल्ला रहे हैं, वे दीवार पर खरोंचे मार रहे हैं, शोर कर रहे हैं या किसी भी तरह से कर रहे हैं। वे कह रहे हैं क्योंकि वे अपनी मूल अवस्था में वापस आना चाहते हैं। इसी कारण एक व्यक्ति जो बीमारी, दर्द और दुख के साथ लगा है, एक समय वे इस तरह से नहीं थे, परंतु वे कह रहे हैं। क्यों? वे सही नहीं हैं, वहाँ कुछ गड़बड़ है और वे कह रहे हैं और वहीं वापस आने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ वे थे जब वे स्वस्थ थे। और जब प्रकृति और लोग, जैसा बाइबल ने कहा, कह रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं कुछ वे उस दशा में नहीं जिसमें होना चाहिए, वे कहीं से गिरे हैं। अब हमें आवश्यकता नहीं कि कोई इसका हमारे लिए अनुवाद करे, समझे? क्योंकि निसंदेह हम जानते हैं ये अनंत जीवन था जहाँ से वे गिरे हैं, और अनंत जीवन पर उन्होंने अपना दावा खो दिया है, आदम और हवा के गिरावट के कारण, जो अनंत जीवन से मृत्यु में गिरे, अदन की वाटिका में, और अपनी अधीनता में सारी प्रकृति को मृत्यु में ले आए। आदम से पहले पेड़ कभी नहीं मरा था, आदम से पहले एक जानवर नहीं मरेगा, और केवल एक चीज है जो नहीं मर सकती, और वो परमेश्वर है, क्योंकि वो अनंत है। और केवल यही मार्ग है कि जो कभी हम मरने से अलग रह सकते हैं। हमारे अपने अंदर अनंत जीवन होना ही चाहिए कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो जाएं। परंतु जब हम मर गए, जैसा कि मैंने सुबह के संदेश में कहा, पाप करके हमने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया और इस गहरी खाई को पार कर गए। अब हम परमेश्वर की पकड़ से बाहर निकल गए, गहरी खाई के इस पार। अब निसंदेह जब आदम मृत्यु में गिरा, वो सारी सृष्टि पर मृत्यु ले आया। अब उसे एक स्वतंत्र आचरण माध्यम दिया गया था, ये उनको दिया गया जैसे हमें कि चुनाव करें। अब आदम और हवा आरंभ में वहाँ उनके सामने सही और गलत का वृक्ष था, और वही वृक्ष हरेक के सामने है और हम में से हरेक के सामने। देखिए, परमेश्वर ने ये आदम या हवा के लिए नहीं किया। आप कहते हैं, अच्छा ये उनकी गलती है। नहीं नहीं, ये अब नहीं है, ये आपकी गलती है। अब आप ये आदम के ऊपर नहीं टाल सकते, ये आपको अपने पर लेना होगा, क्योंकि सही गलत आपके सामने है। हम उसी आधार पर हैं जैसे आदम और हवा थे। परंतु आप देखिए, जब हम छुड़ा लिए गए, हम अपना कोई चुनाव नहीं चाहते, परंतु हम उसकी पसंद चाहते हैं। समझे समझे। अब आदम और हवा अपना ही चुनाव चाहते थे। वे चाहते थे, वे ये मालूम करना चाहते थे कि बुद्धि प्राप्त करने के लिए ये क्या है, इसलिए उन्होंने इसमें खोजा और ये मृत्यु का कारण बना। अब जब मनुष्य छुड़ा लिया गया है, अब वो छात्रवृत्ति की और चिंता नहीं करता, वो अब संसार की चीजों की चिंता नहीं करता, संसार की बुद्धि की। अब वो बिल्कुल चुनाव नहीं चाहता, मसीह उसका चुनाव है और बस। अब यही है, वो छुड़ा लिया गया है। अब वो अपनी अगुवाई और नहीं करना चाहता, अब वो किसी से ये बात नहीं करना चाहता कि कहाँ जाए और क्या करे। वो बस प्रतीक्षा करता है और अपने रचयिता की पसंद मालूम करना चाहता है। समझे। तब वो अपने रचयिता के नाम से जाता है जब उसका बनाने वाला कहता है जा। समझे। परंतु मनुष्य बुद्धि ढूंढता है, पाना चाहता है, वह ये अच्छी तरह से नष्ट हो जाती है। परंतु वहाँ वे मुझे अधिक भुगतान करते हैं, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। समझे। देखा, बुद्धि। अब जब आदम ने अपनी पत्नी का तर्क सुनकर पाप किया, बजाय कि परमेश्वर के वचन को पकड़े रहता, इसी ने ही आदम से पाप करवाया। उसकी पत्नी ने शैतान से तर्क वितर्क किया और फिर आदम को उत्पाद दिया, और आदम ने वचन को छोड़ दिया और बेच दिया। उसने अपना वारिसाना अधिकार भी खो दिया जब उसने अपनी संगति और जीवन का अधिकार खो दिया। स्मरण रखें, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और जब उसने अपना जीवन खो दिया, क्योंकि उसके पास पृथ्वी का सर्वोच्च पूर्ण अधिकार था, वो पृथ्वी का एक ईश्वर था। परमेश्वर सारी सृष्टि का परमेश्वर है हर कहीं, परंतु उसका पुत्र के पास इस पृथ्वी का नियंत्रण रखता था। वो बोल सकता था, वो नाम रख सकता था, वो कह सकता था कि वो प्रकृति को रोक सकता था, वो जो चाहे वो ही कर सकता था। समझे। परंतु जब उसने ये कर दिया, उसने अपना वारिसाना अधिकार खो दिया। अब आदम ये कह सकता था, वो पहाड़ यहाँ से हटकर यहाँ आ जाए और ये हो जाता। आदम कह सकता था, ये वृक्ष यहाँ से उखड़कर वहाँ लग जाए, ये हो जाता। समझे। क्योंकि उसके पास सारा सर्वोच्च नियंत्रण था, एक छोटे ईश्वर के समान अपने पिता परमेश्वर के अधिकार में, क्योंकि वह परमेश्वर का एक पुत्र था। अब क्या हम यहाँ एक मिनट के लिए रुक सकते हैं और एक वास्तविक उपदेश ले। देखा, ओ तब यदि लहू ने इसे फिर से साफ कर दिया है, तो अब के विषय में क्या है। समझे। देखिए, परमेश्वर के उस पुत्र ने दूसरे आदम ने किया। समझे। और कहा, वे काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। समझे। आदम ने अपना वारिसाना अधिकार खो दिया पृथ्वी का। अब ये उसके हाथ से चला गया, उसे जिसे उसने बेच दिया, शैतान। उसने परमेश्वर में अपने विश्वास को शैतान के तर्क को बेच दिया, इसलिए उसका अनंत जीवन, जीवन के वृक्ष पर उसका अधिकार, पृथ्वी पर उसका अधिकार जो उसका था, और उसने हर चीज शैतान के हाथों खो दी। उसने अपने हाथों से इसे शैतान के हाथों पहुंचा दिया।
It returned and has been polluted.
इसलिए अब ये हुआ, ये लौट गया और दूषित कर दिया गया और आदम के वंश ने जन्म सिद्ध अधिकार को नष्ट कर दिया जो आदम के पास होना चाहिए था, जो ये पृथ्वी है। ये ठीक बात है। देखिए आदम का वंश, उस दिन मैं वहाँ टूसान पर रुका जहाँ मैं रहा और मैं किसी से बात कर रहा था, वहाँ ऊपर पहाड़ की चोटी पर नीचे देख रहा था। मैंने कहा आप क्या सोचते हैं, 300 वर्ष पहले अपनी खींचने वाली गाड़ी और पत्नी और बच्चों के साथ पीठ पर बैठाए हुए यहाँ पर सवारी के साथ शांति से रहने के लिए आए, कोई व्यभिचार नहीं, ना विस्की, ना जुआ, कुछ भी उनमें नहीं पाया जाता था। वे शुद्धता के साथ रहे और भेड़िया आता, नहाता धोता, हर रात्रि यहाँ सारे टूसान में शोर करता, छोटे पेड़ और कैक्टस किनारे किनारे खिले हुए, और यहोवा ने इस पर दृष्टि की और अवश्य ही मुस्कुराया होगा। परंतु एक श्वेत पुरुष उसी मार्ग से आया और उसने क्या किया, उसने कैक्टस खोद दिए, उसने उन बियर के डिब्बों और विस्की की बोतलों के साथ देश में गंदगी फैला दी, उसने राष्ट्र के आचरण को नष्ट कर दिया। केवल एक ही प्रकार से वो उन इंडियंस को निकाल सका कि उसकी भोजन वस्तु को मार डाले, भैंसों को। जब मैं टॉम स्टोन को पढ़ रहा था उस दिन संग्रहालय में और जेरिनोमो का चित्र देखा, और आप में से बहुत सोच सकते हैं कि जेरिनोमो 100 धर्म त्यागी व्यक्ति था, मेरे लिए वो एक वास्तविक अमेरिकन था। वो उसके लिए लड़ा जो सही था, जो परमेश्वर ने उसे दिया था, एक भूक्षेत्र और एक राष्ट्र और एक स्थान रहने के लिए। मैं उस पर दोष नहीं लगाता। और जब वे श्वेत सिपाही वहाँ घुसे, बल के द्वारा उन्होंने वो जगह ले ली और उन्हें मक्खियों के समान मार डाला। और वहाँ एक मूल चित्र जेरिनोमो के चिकित्सा मुख्यालय का है या उसके अस्पताल का। ये 2 या 3 कंबल के टुकड़े मस्कीट के पेड़ पर टंगे थे और वे घायल वास्तविक मूल अमेरिकन इंडियंस अपने परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और वो जेरिनोमो अपना बालक अपने कूल्हे पर लिए खड़ा हुआ वहाँ अपने योद्धाओं का लहू बहते हुए बिना पेंसिलिन या किसी चीज के मरते देख रहा था। उनकी सहायता के लिए कोई विधि नहीं, मूल परमेश्वर द्वारा दिए गए हुए अमेरिकन। और फिर इन्हें स्वर्ग धर्म त्यागी कहते हैं, मैं उसे एक सज्जन पुरुष कहता हूँ। कोई चीज कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करता। वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, परंतु अमेरिकन सेना जो सुसज्जित थी और वे वहाँ जाकर उन भैंसों को मार डालते। वे पर्यटन के लिए दौड़ते और तेज नहीं खोजी हुई भैंसों के लिए बंदूकें, और वे वहाँ जाते और कहते, ओ आज का दिन अच्छा रहा, अपनी डिब्बे नुमा कार के एक ओर से या सवारी वाली कार, कहते आज मैंने 40 मारी। 40 भैंसें जो कि इंडियंस की सारी जनजाति के लिए 2 या 3 अधिक वर्षों के लिए पर्याप्त थी। वे इससे क्या करते थे, उन्हें रेगिस्तान में पड़ा रहने देते, उनके पुराने शव जमीन पर भरे पड़े रहते और सारे क्षेत्र में बदबू, कोयोटा उसे खाते। जब इंडियन भैंसों को मारते तो धार्मिक अनुष्ठान होता, वो उसके खुरों को लेकर उन्हें बचाकर बर्तन बनाते, उसका मांस वे खाते, यहाँ तक कि आंतों पर लगा हुआ मांस भी। वे उसका सारा मांस लेकर उसको लटकाकर सुखा देते, उसकी खाल सूख जाती थी और उससे कपड़े और तंबू बनाते, वहाँ कुछ ऐसा नहीं। परंतु जब श्वेत मनुष्य आता, श्वेत मनुष्य स्वधर्म त्यागी, वो बदमाश, और वो अंदर आता और उन भैंसों को मार डाला और उन इंडियंस को भूखों मार डाला। कोई भी मूल व्यक्ति अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार के लिए लड़ेगा। ये अमेरिकन झंडे पर एक दाग है जो उन्होंने अमेरिकन के साथ किया, कुल मिलाकर ये उनका है। आप जापानियों के लिए क्या सोचेंगे यदि जापान या कोई रूस अंदर आकर कहे यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से वापस बाहर निकल जाओ, और हमारे बच्चों के साथ वैसा ही करे जिस प्रकार हमने इंडियनों के साथ किया। परंतु याद रखें, जो हमने बोया है और अब हम वो काटने जा रहे हैं। आप जानते हैं ये प्रभु का नियम है, बोने का एक समय है और काटने का एक समय है। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत खराब है। जी हाँ श्रीमान। अब क्या हुआ, आदम के मिलावटी वंश ने सब दूषित कर दिया और देश को पूरी रीति से नष्ट कर दिया। क्या आप जानते हैं बाइबल ये कहती है, और क्योंकि उसने ये किया है, आदम का दूषित वंश, परमेश्वर उन्हें नष्ट कर देगा। आप ये पढ़ना चाहते हैं, आइए देखें। मैंने ये यहाँ लिख रखा है, प्रकाशित वाक्य का 11वां अध्याय, और हम ये पाते हैं। प्रकाशित वाक्य का 11वां अध्याय निकालें और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इनके विषय में क्या कहा है, वे जो इस पृथ्वी का नाश कर रहे हैं। 11वां अध्याय, आइए 18वां पढ़ें। मेरा विश्वास है यही है, 11:18 हम यहाँ पर हैं। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वो समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़े को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। वे क्या करने जा रहे हैं? जो उन्होंने बोया वो काटा। नीचे ही जब आप पाप को सड़क पर दौड़ते देखते हैं, आज रविवार की रात्रि कितना व्यभिचार हुआ आज रात्रि इस नगर में, कितनी स्त्रियां अपने विवाह की प्रतिज्ञा को तोड़ेंगी मैदान के इस छोटे से गड्ढे में जो कि जेफरसन विले कहलाता है। आप क्या सोचते हैं शिकागो में कितने गर्भपातों का अभिलेख होगा 30 दिनों में, 25,000 से 30,000 प्रति माह उन्हें छोड़ जो वापस नहीं आए। शिकागो शहर में कितनी शराब पी गई एक रात में। आप क्या सोचते हैं लॉस एंजलिस में क्या हुआ? कितनी बार प्रभु का नाम व्यर्थ लिया गया आज इस जेफरसन विले के नगर में? क्या ये अब अच्छा है या तब अच्छा था जब जॉर्ज रोजर क्लार्क उन लट्ठों पर आया था? आप देखिए, हमने पृथ्वी को अपनी गंदगी से कितना दूषित कर दिया। अब परमेश्वर उनको नष्ट करेगा जिन्होंने संसार को नष्ट किया है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझ में कुछ था कि मैं पहाड़ों पर जाना चाहता हूँ और देखूँ कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे रखा है। मुझे फ्लोरिडा अच्छा नहीं लगता जहाँ उन्होंने कृत्रिम ताड़ के पेड़ लगा रखे हैं, और ओह, इससे तो मैं ये चाहूँगा कि मगरमच्छ को पूंछ हिलाते हुए देखूँ, जहाँ जंगलों के में बजाय इसके कि बनावटी चीज को देखूँ जो वे हॉलीवुड में करते हैं और उसकी सारी चमक धमक और पियकड़ों का झुंड। और ओ, मैं बस सोचता हूँ किसी दिन जी हाँ। परंतु याद रखें, बाइबल ने हमें ये बताया मत्ती के 5वें अध्याय में, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये ठीक बात है, दीन और नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु ने कहा, धन्य हैं जो नम्र हैं, वे सादे लोग। वे अपने आप को कुछ बड़ा नहीं बनाना चाहते, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु ने ऐसा कहा है, जी हाँ। अब उन्होंने इसे गंदा कर दिया है, परमेश्वर उन्हें नष्ट कर देगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे जब ये शुद्ध हो गई हो। अब ओ प्रभु, अब खोया हुआ अधिकार पत्र अब मूल स्वामी के हाथों में है, सर्व सामर्थी परमेश्वर। पृथ्वी का अधिकार पत्र और अनंत जीवन, जब आदम ने इसे खो दिया तब शैतान के गंदे हाथ इसे ना ले सके, इसलिए ये सीधा मूल स्वामी के पास वापस चला गया, स्वयं परमेश्वर के पास। कुछ ही मिनटों में हम ये देखने जा रहे हैं, वहाँ वो सिंहासन पर इस अधिकार पत्र को अपने हाथ में लिए बैठा हुआ है। ओ, मुझे धार्मिक अनुभूति हो रही है। अनंत जीवन के लिए अधिकार पत्र, अधिकार पत्र का सारांश अनंत जीवन के लिए। जब आदम ने इसे बुद्धि के लिए खो दिया था बजाय विश्वास के, ये वापस स्वामी के हाथों में चला गया। सामर्थी परमेश्वर, क्या ही महान बात है। ठीक है, प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है? परमेश्वर के हाथों में छुटकारे के दावे की प्रतीक्षा कर रहा है। उसने छुटकारे का मार्ग बनाया है, उसने वापसी का मार्ग बनाया है, और किसी दिन छुड़ाने वाला इसे वापस लेगा। आप देखिए, हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, हम सिंहासन पर बैठे व्यक्ति पर ध्यान करेंगे। ठीक है, छुटकारे के दावे की प्रतीक्षा करेंगे। ये छुटकारा है, ये छुटकारे की पुस्तक क्या है? ये अधिकार पत्र का सारांश। आप कहते हैं सारांश, सारांश क्या होता है? इसको पीछे आरंभ तक खोजना, इसका ये अर्थ है। जैसे वो एक छोटी सी, जैसे स्याही की वो छोटी बूंद, आज सुबह जब ये ब्रीच से जाकर टकराती है, ये फिर से वापस चली गई। और जब पाप स्वीकार कर लिया जाता है और यीशु मसीह के लहू में गिर जाता है, ओ प्रभु ये सारांश देता है कि ठीक सीधा वापस फिर से सृष्टिकर्ता को आप परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं। अधिकार पत्र का सारांश सर्व सामर्थी के हाथों में है। ओ प्रभु, इस छुटकारे का अर्थ वो सब जो आदम और हवा के द्वारा खो गया था, उसका वैधानिक अधिकार। ओ प्रभु, नया जन्म पाए मसीही का इससे क्या लेना देना होना चाहिए? ये सामान्य दस्तावेज का वैधानिक अधिकार है। अनंत जीवन का अधिकार पत्र का अर्थ है कि आप हर चीज का अधिकार रखते हैं जो आदम और हवा ने खो दिया था। भाई इसका क्या है दस्तावेज का अधिकार रखना? आदम छुटकारे की शर्तें पूरी ना कर सका। खोने के बाद उसने पाया कि उसने पाप किया और अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया और खाई के इस पार था, इसलिए वो इसे छुड़ा ना सका। वो बस इसे नहीं कर सका क्योंकि उसे स्वयं के लिए भी ये छुटकारा चाहिए था, स्वयं के लिए, इसलिए वो इसे ना कर सका। परंतु व्यवस्था को छुड़ाने वाला निकट कुटुम्बी की मांग करती है। परमेश्वर की व्यवस्था छुड़ाने वाले निकट कुटुम्बी की मांग करती है। आप इस पर निशान लगाना चाहते हैं, छुड़ाने वाला निकट कुटुम्बी? ले व्यवस्था 25 में इसे देखें। हमारे पास इसे ढूंढने का समय नहीं है क्योंकि आप जानते हैं हर विषय एक रात्रि लेगा, समझे? परंतु परमेश्वर की व्यवस्था ने इसके बदले कुछ लिया। अब क्या होता है यदि परमेश्वर ने इसके बदले में लेने के लिए कुछ और न दिया होता, परंतु प्रेम ने उसे बाध्य कर दिया कि ये करे। कि मनुष्य बिना वापसी के था और उसके पास वापस जाने का कोई मार्ग नहीं था, वो नष्ट हो गया था। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह ने इस छुड़ाने वाले निकट कुटुम्बी को व्यक्ति यीशु मसीह में पूरा किया। व्यवस्था की ये मांग थी, अनुग्रह ने इस मांग को पूरा किया। ओ आश्चर्यजनक अनुग्रह, सुनने में कितना मीठा। परमेश्वर की व्यवस्था को एक निर्दोष प्रतिनिधि की मांग थी, और कौन निर्दोष था? हर व्यक्ति लैंगिक संबंध के बाद जन्मा, हर एक और केवल एक ही जो नहीं था, अपने अनंत जीवन के अधिकार को छोड़ दिया और इस पृथ्वी पर राजा होने को। ओ जब मैं इस वचन पर सोचता हूँ, क्योंकि तूने हमें वापस परमेश्वर के लिए छुड़ाया और ताकि हम राज्य करें और पृथ्वी पर राजा और याजक बने। ओ प्रभु, क्या ही छुड़ाने वाला कुटुम्बी। ओ यहाँ हमारे पास क्या ही कहानी होगी। ध्यान दें, व्यवस्था की मांग एक छुड़ाने वाले निकट कुटुम्बी की है कि खोई चीज को वापस लाए। अनुग्रह ने इस आवश्यकता को व्यक्ति यीशु मसीह में पूरा किया। एक छुड़ाने वाला कुटुम्बी मनुष्य जाति से उत्पन्न होना चाहिए। अब हम कैसे हो सकते थे जबकि हर मनुष्य जो जन्मा और कोई भी जो इसे नहीं देख सका कि ये एक लैंगिक व्यवहार था, तो वो पूरी रीति से अंधा है। देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति एक स्त्री से ही जन्मा था, और परमेश्वर की मांग छुड़ाने वाले निकट कुटुम्बी की थी, और उसे एक मनुष्य ही होना चाहिए। ओ अब आप क्या करने जा रहे हैं? नियम छुड़ाने वाले निकट कुटुम्बी की मांग करता है। अब वो स्वर्गदूत को नहीं ले सकता था, उसे तो एक मनुष्य ही होना चाहिए, क्योंकि हम स्वर्गदूतों के कुटुम्बी नहीं, हम एक दूसरे के संबंधी हैं। स्वर्गदूत कभी नहीं गिरे, वे भिन्न प्रकार के जीव हैं, उनकी देह भिन्न है, उसने कभी भी पाप नहीं किया या कुछ भी, वो भिन्न है, परंतु व्यवस्था की मांग छुड़ाने वाले निकट कुटुम्बी की है और पृथ्वी पर हर व्यक्ति काम भावना से जन्मा है। क्या आप नहीं देखते कि ये कहाँ से आया है? यही जहाँ से पाप आरंभ हुआ, इसलिए आप देखते हैं कि ये अब कहाँ है, यहाँ ये आपका सर्प वंश आता है, समझे? अब ध्यान दें, छुड़ाने वाले निकट कुटुम्बी की आवश्यकता है और छुड़ाने वाला निकट कुटुम्बी छुड़ाने वाला मनुष्य जाति से जन्मा होना चाहिए। यहाँ ये हमें एक छोर पर ले आता है, परंतु मैं आपके लिए एक तुरही बजा दूं। कुंवारी ने जन्म देकर उस चीज को उत्पन्न किया, आमीन। कुंवारी के जन्माने के द्वारा हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुम्बी उत्पन्न हुआ, और कोई नहीं केवल वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर इमैनुएल बन गया, हम में से एक इमैनुएल, वो छुड़ाने वाला निकट कुटुम्बी मिला था। अब देखिए परमेश्वर ने कैसे मांग को पूरा किया, और वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते थे, परंतु तब अनुग्रह ने कदम बढ़ाया और व्यवस्था को ढांप दिया और एक उत्पाद उत्पन्न किया, आमीन। ओ जब आप घर पहुँचते हैं, जब मुझे अपनी छोटी सी झोपड़ी मिलती है, भाई नेवल इस विषय में गाते हैं, जब आप सब वहाँ नीचे कुछ सुनते हैं, एक दिन सुबह गाते हुए आश्चर्यजनक अनुग्रह, कितनी मीठी आवाज, जिसने मुझ जैसे अभागे को बचा लिया, आप कहते हैं परमेश्वर की महिमा हो, बूढ़े भाई बर्नम ने बना दिया, वो वहाँ है, देखिए, जी हाँ, ये अनुग्रह है जिसने मुझे भय मानना सिखाया, ये अनुग्रह था कि मुझे भय मुक्त करता है, वो अनुग्रह जो प्रकट हुआ कितना मूल्यवान है, वो घड़ी मैंने पहली बार विश्वास किया। प्रतीक्षा करें जब तक हम इस पर आते हैं, एक क्षण में, ओ प्रभु। अब देखिए वो पुस्तक, रूत की पुस्तक, इसका सुंदर चित्रण देती है, कैसे बोआज और नियोमी ने अपनी भू संपत्ति खो दी। आप जानते हैं, आपने इस पर मुझे प्रचार करते सुना है क्या नहीं? अपने हाथों को उठाएं यदि आपने मुझे इस पर प्रचार करते सुना है, ताकि आप इसे समझ लें। देखिए, बोआज को छुड़ाने वाला होना था, और केवल वही था जो कर सकता था, उसे कुटुम्बी ही होना था, एक निकट कुटुम्बी, और नियोमी को छुड़ाने में उसे रूत मिली, ये यीशु था, बोआज मसीह की प्रतिछाया है, और जब उसने इसराइल को छुड़ाया, उसे अन्य जाति दुल्हन मिली, इसलिए आप देखिए ये बहुत ही सुंदर है, ये हमारे पास टेप पर है, मुझे पक्का है ये यहाँ कहीं आप इसे लेना चाहेंगे। अब ध्यान दें, अब उसे निकट कुटुम्बी होना चाहिए, इसलिए आप देखिए एक स्वर्गदूत इसे नहीं कर सकता था, एक मनुष्य इसे नहीं कर सकता था, ये मनुष्य ही होना चाहिए था, परंतु वो स्त्री से जन्म नहीं ले सकता था, एक काम भावना का व्यवहार, इसलिए एक कुंवारी से जन्मा, पवित्र आत्मा ने मरियम पर छाया की, इसलिए यीशु यहूदी नहीं था, यीशु अन्य जाति नहीं था, यीशु परमेश्वर था, ये बिल्कुल सही है, उसका लहू किसी काम भावना के व्यवहार से नहीं आया, वो पवित्र परमेश्वर की सृष्टि का लहू, और हम यहूदी लहू से नहीं बचे, ना ही अन्य जाति के लहू से बचाए गए, हम परमेश्वर के लहू के द्वारा बचाए गए, ये बाइबल के अनुसार है, ये ऐसा कहती है, हम बचाए गए, इसलिए आप देखिए यीशु परमेश्वर था, वो कोई तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति नहीं था, वो एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर था, देखिए वो परमेश्वर इमैनुएल था, परमेश्वर अपनी महिमा से नीचे उतर कर आया और अपने आप को प्रकट किया। मैं बूथ क्लिबोर्न की उस कहानी से प्रेम करता हूँ, वो महान सुंदर भजन, अपनी महिमा से नीचे उतरा कि एक जीवित कहानी, मेरा परमेश्वर और बचाने वाला आया, और यीशु उसका नाम था, चरनी में पैदा हुआ, अपनों में परदेशी, दुख आंसू और संघर्ष का एक मनुष्य, ओ क्या ही कृपालुता, हमारे लिए छुटकारा लाया, जब मृत्यु की रात्रि में जरा भी आशा नहीं दिखाई देती थी, परमेश्वर अमूल्य कोमल ने अपनी महिमा को एक ओर रख दिया, निवेदन में झुक गया और मेरा प्राण बचा लिया, ओ मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, कितनी उसकी आराधना करता हूँ, मेरी सांस, मेरी धूप, मेरा सब कुछ, वो महान छुड़ाने वाला मेरा बचाने वाला बन गया, वो महान रचयिता मेरा बचाने वाला बन गया, और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। यही है जिसने मांग को पूरा किया। अनुग्रह ने व्यक्ति यीशु मसीह को उत्पन्न किया और अब हम इस पुस्तक को पाते हैं। परमेश्वर ने अपना तंबू ताना, परमेश्वर से निकलकर मनुष्य बन गया। उसने अपनी प्रवृत्ति को बदल दिया, सर्वशक्तिमान से एक मनुष्य होना, मनुष्य के रूप को धारण करना, ताकि वो मर सके मनुष्य को छुड़ाने के लिए। जब तक उसे देखे ना, प्रतीक्षा करें। जब वहाँ कोई भी योग्य न था, समझे, ठीक है। बाइबल में रूत की पुस्तक में जैसा कि आप पढ़ते हैं, आप ये पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति गोयल कहलाता था, GOEL, गोयल कहलाया था, या वो व्यक्ति जो मांग को पूरा कर सकता था, और ये करने के योग्य होना चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए, और कुटुंबी होना चाहिए, अगला निकट कुटुंबी ये करे। और परमेश्वर आत्मा का सृष्टि करता हमारा कुटुंबी बन गया, जब वो मनुष्य बना, ताकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले सके और दाम चुकाए और हमें फिर से वापस परमेश्वर के पास ले आए। यही है एक छुड़ाने वाला। अब मसीह ने हमें छुड़ा लिया है, अब हम छुड़ाए जा चुके हैं, परंतु उसने अभी अपने अधिकार का दावा नहीं किया है। अब आप यहाँ हो सकता है सहमत ना हो, परंतु थोड़ी देर रुकें, एक मिनट, देखिए, हम देखेंगे, समझे। उसने इसका दावा नहीं किया है, समझे। यदि वो छुटकारे की पुस्तक को लेता है, हर चीज को जो आदम के पास थी, और हर चीज उसने खो दी, मसीह वापस ले लेता है, और उसने हमें पहले ही छुड़ा लिया है, परंतु उसने अभी अधिकार नहीं लिया है, वो नहीं ले सकता जब तक कि नियुक्त समय ना आए, और फिर पुनरुत्थान आएगा, तब पृथ्वी का फिर से नवीनीकरण होगा, और फिर वो पृथ्वी का अधिकार लेगा। जब उसने हमें छुड़ाया, उसने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, परंतु वो इसे नियुक्त समय पर करेगा। ओ प्रभु, इसका वर्णन इस सात मोहर की पुस्तक में है, जिसके विषय में अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। छुटकारे की पुस्तक, उसका वर्णन यहाँ पर है, यही जो सब मसीह अंत में करेगा, हम पर इस सप्ताह में प्रकट किया जाएगा, इन सात मोहरों में, यदि परमेश्वर हमें करने देगा, समझे, ठीक है, ये प्रकट किया जाएगा। जैसे जैसे मोहरे टूटती हैं, प्रकट हुआ और हमें दिया गया, तब हम देख सकते हैं कि छुटकारे की ये बड़ी योजना क्या है, और कब और कैसे ये किया जाना है। ये सारा इस भेद भरी पुस्तक में छिपा है, ये सात मोहरें लगाकर बंद की हुई है, इसलिए केवल मेमना ही है जो इन्हें तोड़ सकता है। अब मुझे क्षमा करें, हम अनुभव करते हैं, यदि आप वचनों में देखना चाहते हैं, तो आप यर्मयाह में जाकर और वहाँ इसे देख सकते हैं। जब वो उस देश की बंधुआई में जा रहा था, आप जानते हैं कि उसने रिश्तेदार से खरीदा, उसके रिश्तेदार के पुत्र के पास कुछ संपत्ति थी, और वो वहाँ गया मोहर की। यदि हमने इस सब को लिया, ये हमारे पास सात कलीसियाई कालों में भी है, ये मोहरें और आदि आदि वहाँ पर। आप पुराने नियम में एक मोहर देखते हैं, वो इस प्रकार से लिपटी हुई थी, और भेद यहाँ पर था, और ये भेद छुपा हुआ था, ठीक है। ये चारों ओर से मोहर बंद था और यहाँ रखा था, अमुक अमुक का दावा। फिर अगला भेद चारों तरफ लपेटा हुआ था, ये वारसाना अधिकार क्या था, और इससे लगा हुआ था, अमुक अमुक का दावा। और आगे चलता गया, जब तक कि एक लिपटा हुआ रोल नहीं बन गया, क्योंकि तब लोगों के पास इस प्रकार की पुस्तकें नहीं थी, ये लिपटे हुए गट्ठर में थे। आप में से कितने ये जानते हैं, खर्रा कहलाया, ठीक है, एक मोहरबंद लिपटा खर्रा। आप यहाँ से एक तोड़ सकते थे, इसका भेद क्या था, इसे तोड़कर खोलते और आप देख सकते थे कि वो दावा क्या था, और फिर दूसरे वाले को तोड़ते और आप देख सकते थे कि दावा क्या था। और सारी बात यहाँ सात मोहरे हैं, जिसमें परमेश्वर के भेद संसार की सृष्टि के समय से सब यहाँ मोहर बंद हैं, और विभिन्न सात मोहरों के द्वारा प्रकट हुए कि यदि परमेश्वर की इच्छा है, वो हमें होने दे कि हम इन मोहरों को वापस खोलें और पुस्तक में से होते हुए देखें और ढूंढें, ये सब किस विषय में है, समझे। ओ, मैं आशा करता हूँ कि हमारा महान समय होगा। यहाँ छुटकारे का भेद मोहर बंद है, जब तक कि ये पुस्तक तब तक तोड़ी नहीं जा सकती थी जब तक कि अंतिम संदेश वाहक का संदेश, ये लिपटा बंडल वहाँ पर है। हमें मालूम था कि ये वहाँ था, हम जानते थे कि ये छुटकारा था, हमने विश्वास किया ये छुटकारा था। यर्मयाह ने कहा, ये लपेटी हुई पुस्तक को रखना ही है। जैसा कि इसे आप वहाँ पढ़ते हैं, वो कहेगा उसे ये मिट्टी के बर्तन में ही रखनी है, समझे? वो क्या ही सुंदर चीज है जिसके विषय में हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। ये लिपटी हुई पुस्तक मिट्टी के बर्तन में रखी है, एक बर्तन जो एक बार देह बना, महिमा हो, मरा, फिर जी उठा और मिट्टी के बर्तन में रखा रहा जब तक कि खरीदने का समय नहीं आया। ओ प्रभु, सुंदर, ठीक है। अब इन संदेशों को जब तक कि ये मिट्टी का बर्तन, जब तक परमेश्वर का निर्धारित समय, अंतिम संदेश वाहक का पृथ्वी पर आना नहीं होता और इन सारे लोगों का न्याय हुआ और कहा मैं जानता हूं कि ये वहां है, मैं विश्वास करता हूं कि ये वहां है और उन्होंने इस पर युद्ध किया और इसे लेकर सामने आए और चीजों को उत्पन्न किया। विश्वास के द्वारा उन्होंने इसका विश्वास किया, परंतु अब ये हमारे सामने प्रकाशन के द्वारा लाया जा रहा है और परमेश्वर के हाथ से समर्थन के द्वारा। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, उसने इसकी प्रतिज्ञा दी है। अब आइए हम देखेंगे कि हम कहां पर थे। आइए दूसरे पद पर चलें। पहले पद के लिए लंबा समय है, पर आइए हम दूसरा पद पढ़ लें। अब हो सकता है अगले वाले पर हम अधिक समय नहीं रुकेंगे। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। अब स्मरण रखें, आइए हम पहले पद को फिर से पढ़ें ताकि हम इसे साथ ले सकें। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में परमेश्वर, वो कौन है? जीवन की पुस्तक का मूल और निरपेक्ष रखने वाला, वो इसे पकड़े है परमेश्वर। जब आदम ने इसे खो दिया तो ये वापस मूल स्वामी के पास वापस चली गई, ये उसी की है। और यूहन्ना दर्शन में ने देखा जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो सात मोहर लगाकर बंद की गई थी। देखिए अंदर, अब जब हम इन मोहरों को तोड़ने जा रहे हैं तो आप देखने वाले हैं ये वापस वचन में जाता है। कुल मिलाकर वापस इन प्रत्येक मोहरों के लिए वे सारी चीजें एक साथ, सारे भेद यहाँ इन मोहरों में हैं, समझे? बाइबल का हर भेद इन मोहरों में है और जब तक समय नहीं आता ये मोहरें तोड़ी नहीं जा सकती। मैं इसे यहाँ एक मिनट में सिद्ध करूँगा। अब ध्यान दें, याद रखें, पुस्तक मोहर बंद है, यहाँ एक, ये यहाँ, ये मोहर, तब दूसरा वाला लपेटा गया, एक मोहर, दूसरा लपेटा गया, एक मोहर। ये एक छुटकारे की पुस्तक है, ये सारी चीजें मिलकर एक पुस्तक बनाती हैं और ये सात मोहरों से मोहर बंद है और फिर ये पीछे की ओर है, इसलिए क्योंकि ये लिपटा हुआ है। मोहरबंद भेद अंदर की ओर है और ये केवल कहता है सफेद घुड़सवार या काला घुड़सवार और क्या क्या बाहर की ओर, परंतु सारी पुस्तक का भेद उन मोहरों में है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। छुटकारे की संपूर्ण योजना इन सात मोहरों में प्रकट की गई है। ओ, ये विशेष समय है, इसे पाने में परमेश्वर हमारी सहायता करे, समझे? अब एक बलवंत स्वर्गदूत, अब दूसरा पद, बलवंत स्वर्गदूत जोरदार आवाज में घोषणा करता है कौन योग्य है, किसके लिए योग्य, कौन इस पुस्तक को लेने योग्य है। अब हम ये पाते हैं कि अब वो पुस्तक कहाँ है, उस मूल स्वामी के पास, क्योंकि ये पुत्र के द्वारा खोदी गई थी, मानव जाति में परमेश्वर के पहले पुत्र के द्वारा। शैतान की सुनने के द्वारा उसने अपना अधिकार खो दिया, उसने दे दिया, उसने क्या किया, उसने शैतान की बुद्धि को स्वीकार किया बजाय परमेश्वर के वचन के। अब क्या हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकेंगे? परमेश्वर के पुत्र इस विषय में धर्म विज्ञान के विचार को लेंगे बजाय परमेश्वर के वचन के। देखिए, यही चीज आदम ने की, अपना अधिकार दे दिया और जब ये हुआ ये सीधा वापस चला गया। क्या आप नहीं देख सकते वे युग कहाँ पर थे, समझे? सीधा वापस मूल धारक के पास। और यूहन्ना आत्मा में यहाँ स्वर्ग में खड़ा है, वो हाल ही में ऊपर उठाया गया था उन कलीसियाई कालों से। देखिए कलीसियाई काल देखें, और फिर चौथे अध्याय में वापस उठा लिया गया। उसने कहा यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वे आने वाली बातें तुझे दिखाऊंगा। और उसने किसी को सिंहासन पर बैठे देखा, उसके हाथ में ये पुस्तक थी उसके दहने हाथ में। अब इस पर सोचें, और फिर इस पुस्तक में छुटकारे का अधिकार पत्र है और सात मोहरों से मोहर बंद है। अब फिर एक स्वर्गदूत आता है, एक बलि स्वर्गदूत, जोरदार आवाज से घोषणा करता है इस पुस्तक के खोलने के योग्य कौन है, इस पुस्तक को लेने के मोर खोलने के योग्य कौन है, इस पुस्तक को खोलने के योग्य कौन है। देखिए स्वर्गदूत ने ये पूछा, यूहन्ना ने देखा और उसने कहा अब कौन योग्य है वो करे। ओ प्रभु, संभव है मैं ये अनुभव कर रहा हूँ इस प्रकार से, परंतु उसे करने दो। स्वर्गदूत ने कहा वो करे। यहाँ छुटकारे की पुस्तक है, यहाँ छुटकारे की योजना है, यहाँ केवल एक ही मार्ग है जिससे आपका कभी छुटकारा होगा, क्योंकि यहाँ सारे स्वर्ग और पृथ्वी के छुटकारे का अधिकार पत्र है। यदि वो आना चाहे उसे सामने आने दो। ओ प्रभु, अब बोले या सदा के लिए शांत रहे, वो सामने आए और इस पुस्तक का दावा करे। इसे करने के लिए कौन योग्य है? और यूहन्ना ने कहा स्वर्ग में कोई भी मनुष्य योग्य ना मिला, पृथ्वी पर कोई मनुष्य योग्य ना मिला, कोई मनुष्य पृथ्वी के नीचे नहीं जो कभी जीवित या मरा हुआ योग्य मिला, कोई मनुष्य योग्य ना मिला। स्वर्गदूत की पुकार छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी के प्रकट होने के लिए पुकार थी। परमेश्वर ने कहा मेरे पास एक नियम है, एक छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बदले में हो सकता है। वो छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी कहाँ है? इसे लेने के योग्य कौन है? और ये आदम से आती है और बढ़ते हुए प्रेरितों और नबियों और हर चीज से होते हुए, और कोई नहीं मिला। अब इस विषय में क्या है? स्वर्ग में कोई नहीं, पृथ्वी पर कोई नहीं, कोई कभी नहीं जो कभी रहा हो। एलिया वहाँ खड़ा था, मूसा वहाँ खड़ा था, सारे चेले वहाँ पर खड़े थे, या सारे वे जो मर चुके थे, वे सारे पवित्र लोग, अय्यूब, संत लोग, हर कोई वहाँ पर खड़ा हुआ था और कोई भी योग्य न था। यहाँ तक कि पुस्तक को देखे भी कोई नहीं कि इसे लेकर और मोहरों को तोड़े। अब वो पोप कहाँ है और वे सारे जो यहाँ आए? आपका बिशप कहाँ है? हमारी योग्यता कहाँ है? हम कुछ भी नहीं हैं। ये ठीक बात है। उसने पूछा निकट कुटुंबी के लिए सामने आए यदि वो सके, परंतु यूहन्ना ने कहा कोई मनुष्य योग्य नहीं है, और वहाँ पर कोई भी लोगों में से योग्य ना निकला। अब जैसे स्वर्गदूत, जैसे कि उदाहरण के लिए हम कहेंगे कि जबराइल या मिकाएल, परंतु याद रखें इसे छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी होना चाहिए। यहाँ यूहन्ना ने कहा और कोई MAN मनुष्य नहीं, न ही स्वर्गदूत, न ही सराप, उन्होंने पाप नहीं किया, परंतु वे अलग वर्ग में थे, वे कभी भी नहीं गिरे थे, परंतु इसे छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी होना चाहिए। कोई मनुष्य नहीं, क्योंकि उनमें से कोई भी छुड़ाया हुआ नहीं था, कोई भी मनुष्य योग्य नहीं था कि उस पर दृष्टि भी करे। ओ नहीं, बाप रे बाप, इस मनुष्य निकट कुटुंबी चाहिए, और उसने इसी के लिए पूछा और ये कहीं नहीं मिला। वहाँ कोई नहीं था, बिशप नहीं, आर्थ बिशप नहीं, पादरी नहीं, पदानुक्रम नहीं, कोई नहीं, कहीं भी नहीं, इतनी भी पवित्रता ही नहीं कि यहाँ तक कि पुस्तक पर दृष्टि डाले। बाप रे बाप, ये बहुत ही शक्तिशाली है। परंतु यही जो बाइबल ने कहा, मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूँ जो यूहन्ना ने कहा। और बाइबल ने ये बताया कि यूहन्ना रो पड़ा, न कि जैसा कुछ लोगों को सिखाया गया। मैंने एक व्यक्ति को ये सिखाते हुए सुना, एक बार कहा यूहन्ना रोया क्योंकि उसने अपने आप को योग्य ना पाया। ओह, पवित्र आत्मा के प्रभाव में कोई भी व्यक्ति इससे भिन्न पाएगा। देखिए परमेश्वर की प्रेरणा में इससे अलग ही जानेगा। परंतु यूहन्ना रोया, यहाँ जो मैं सोचता हूँ जिसके लिए रोया, क्योंकि यदि कोई भी योग्य नहीं है और इस छुटकारे की पुस्तक को खोल सके, तो सारी सृष्टि नाश हो गई थी। यहाँ पुस्तक है, यहाँ वो अधिकार पत्र है और ये निकट छुड़ाने वाले कुटुम्बी के सामने रखी जाएगी जो इसकी योग्यता पूरी करता हो। ये बल्कि परमेश्वर का अपना नियम है, समझे? परमेश्वर की मांग निकट छुड़ाने वाला कुटुम्बी है जो योग्य था, जो इसे करने के योग्य हो, जिसके पास करने के लिए कुछ ठोस हो। और सरदूत ने कहा, अब छुड़ाने वाला निकट कुटुम्बी निकल कर सामने आए। और यहुन्ना ने देखा और उसने सारी पृथ्वी पर देखा, उसने सारी पृथ्वी के नीचे देखा और वहाँ कोई नहीं था। वहाँ वो सृष्टि और हर चीज नष्ट हो गई। निसंदेह यहुन्ना रोया, हर चीज नष्ट हो गई। वो रोना पूरा भी नहीं कर पाया, परंतु मिनट में ही। यद्यपि वहाँ एक प्राचीन खड़ा हुआ और बोला, यहुन्ना मत रो। ओह प्रभु, उसका रोना खत्म नहीं हुआ, परंतु मिनट में ही। यहुन्ना ने सोचा, ओह प्रभु, वो मनुष्य कहाँ है? वो नबी खड़े हैं, वे भी वैसे ही जन्मे जैसे मैं जन्मा था। वहाँ संत खड़े थे, वहाँ खड़े थे, ओह वहाँ यहाँ पर कोई नहीं था। मुझे एक मनुष्य चाहिए जो इसे करने के योग्य हो। मैं एक व्यक्ति चाहता हूँ जो छुड़ा सकता हो, और उसे कोई नहीं मिला था, इसलिए यहुन्ना रो पड़ा था। ओ, हर चीज नष्ट हो गई थी और वो बुरी तरह से रोया। और वो दुखी था, क्योंकि हर चीज, सारी सृष्टि, हर चीज चली गई थी। यदि वे किसी को भी नहीं पा सके, परमेश्वर की महिमा हो, यदि वे किसी को भी ना पा सके जो मांग को पूरा कर सके, वहाँ हर मनुष्य जाति और सारा संसार और सृष्टि गई। ओ, हर चीज गिर चुकी थी, छुटकारे के अधिकार, अनंत जीवन का अधिकार, ज्योति, ये सारे अधिकार खो दिए गए थे और वहाँ कोई नहीं था कि इसका दाम चुका सके। और यहोना ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी योग्य नहीं था और कोई भी पुस्तक पर दृष्टि नहीं डाल पाया। ओ, ये मनुष्य ही होना है। यहोना रो पड़ा, क्योंकि इसे कोई नहीं कर सकता था और हर चीज नष्ट हो गई थी। और वहाँ एक प्राचीन के पास से आवाज आई, जो चार जानदारों के बीच खड़ा हुआ है, और स्वर्ग के सारे महान सेना ने कहा, यहुन्ना मत रो। ओ प्रभु, परमेश्वर का अनुग्रह, यहुन्ना निराश ना हो, मत रो, क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद का मूल और वंश से वो जयवंत हुआ है। जय पाने का अर्थ संघर्ष के साथ और जीतना। ओ प्रभु, गतसमनी का बाग, जब उसके चेहरे पर से लहू की बूंदें गिरी, वो जय पा रहा था, समझे? समझे? वो सिंह और दाऊद का मूल जीत गया, जयवंत हो गया। जैसे कि याकूब धोखेबाज होने के नाते, और जब वो सरदूत के संपर्क में आया, वो पकड़े रहा और सरदूत ने छुड़ाने का यत्न किया। उसने कहा, मैं तुझे जाने ना दूंगा। वो उसे पकड़े रहा जब तक कि उसने वो नहीं पा लिया जो चाहता था, और उसका नाम बदल गया था, चालाक से, जिसका अर्थ धोखेबाज, किसमें? एक राजकुमार परमेश्वर के साथ, इज़राइल, वो जयवंत हुआ। और यहूदा के गोत्र का ये सिंह जयवंत ठहरा। उसने कहा, यहुन्ना मत रो, क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद का मूल, जयवंत हुआ है। वो पहले ही जय पा चुका है, उसने ये कर दिया है, यहुन्ना ये हो चुका। ओ प्रभु, उसने ब्लीच उत्पन्न किया है, विरंजक, जो पाप को वापस चिकने हाथों में वापस कर देता है, जो कि अपनी बुद्धि से, जिसने इसे दूषित किया, मनुष्य जाति को। जी हाँ, परंतु जब यहुन्ना देखने के लिए मुड़ा, उसने एक मेमना देखा, सिंह से कितना भिन्न है। उसने कहा, सिंह जयवंत हुआ है। फिर देखिए, मैं इसे वहाँ प्रयोग कर सकता हूँ, परमेश्वर सादगी में छिप रहा है। उसने कहा, वहाँ एक सिंह है, ये पशुओं का राजा है, सिंह जयवंत हुआ है, शक्तिशाली चीज वो एक सिंह है। मैं वहाँ अफ्रीका के जंगल में पड़ा था और जिराफ का बोलना सुना और बड़ा शक्तिशाली हाथी हवा में सूंड लहराता है वी वी वी, और रेगिस्तान में जंगली का चिल्लाना चीखना अपने खूनी में खून का पानी कर देने वाली चिल्लाहट, और वो झींगर जब तक बिली पॉल और मैं वहाँ एक छोटी पुरानी जगह में लकड़ी की झाड़ियों से ढके पड़े थे और कुछ दूर पर सुना एक सिंह दहाड़ा और रेगिस्तान में हर चीज शांत हो गई, यहाँ तक कि झींगरों का शोर बंद हो गया। राजा बोलता है, ओ प्रभु, मैं आपको बताता हूँ, ये जब नामधारियों के संदेह भूमि पर गिर जाते हैं तो हर चीज शांत हो जाती है। जब राजा बोलता है, और ये राजा है, ये उसका वचन है। उसने कहा, यूहन्ना चिंता ना कर, मत रो, निराश ना हो, यूहन्ना तुम यहाँ मेरे दर्शन में है, मैं तुझे कुछ दिखा रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि तू थक कर टूट गया है, क्योंकि तू जानता है छुड़ाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ चला गया, वहाँ कोई नहीं जो मांग को पूरा करे, परंतु यहूदा के गोत्र का सिंह। यहूदा को आप जानते हैं, हमारे पास था यहाँ श्याम पट पर, आप जानते हैं यहूदा के गोत्र का चिन्ह एक सिंह था, याद रखें सिंह और बैल और इस प्रकार से मनुष्य का सिर और आदि आदि, और वे सारा आप रक्षक वो वचन, जबकि वे सारे मरकुस मती लूका और यूहन्ना ये सारे प्रेरितों के काम पुस्तक के चारों ओर खड़े हुए हैं। और मैंने एक मनुष्य को कहते सुना, एक महान सेवक ने कहा, प्रेरितों के काम की पुस्तक बस फांसी के तख्ते के काम है, ये पहली दाखलता थी जो कि पवित्र कलीसिया ने उपजाई। ओ जी हाँ श्रीमान, और इसने फिर कभी यदि दूसरी वाली उत्पन्न की तो ये भी उसी प्रकार की होगी। जी हाँ श्रीमान, आपके पास कुछ सांटी हुई दाखलताएं हैं और वे नींबू उगा रही हैं, इससे तो संतरा होना चाहिए, परंतु समझे, जब वो दाखलता अपनी डाली फिर से कभी उत्पन्न करेगी तो ये ठीक बिल्कुल मूल के समान होगी। और मती मरकुस लूका और यूहन्ना यीशु समाचार वहाँ खड़े हुए रक्षा कर रहे हैं। एक मनुष्य की बुद्धि, सिंह की शक्ति, बैल का कार्य और चीते की तेजी, या बल्कि उकाब, जी हाँ वहाँ सुसमाचार खड़े हैं। क्या याद रखें, जब ये हमारे पास थे, ये सात कलीसियाई कालों में हैं। अब उसने कहा, यहूदा के गोत्र का वो सिंह, क्यों यहूदा से, ओ यहूदा, इसके आगे व्यवस्था देने वाला नहीं जाएगा उसके घुटनों के बीच से जब तक शीलो ना आए, परंतु वो यहूदा से होकर आएगा, और सिंह यहूदा के गोत्र का चिन्ह जयवंत हुआ है, वो विजयी हुआ है। और जब उसने चारों ओर देखा सिंह कहाँ था, उसने एक मेमना देखा, आश्चर्य, सिंह को ढूंढ रहा है और एक मेमना देखता है, प्राचीन उसे सिंह कहता है, परंतु जब यूहन्ना ने देखा तो उसने एक मेमना देखा, एक मेमना जैसे कि वो संसार के रचने से पहले घात किया गया, एक मेमना घात किया गया, ये क्या था, वो मेमना क्या था, ये लहू लुहान घायल, एक मेमना जो कि घात किया गया परंतु फिर जीवित हो गया, और वो लहू लुहान था। ओ प्रभु, आप कैसे उसकी ओर देख सकते हैं और लोग और पापी बने रहें? एक मेमना ऊपर आता है, प्राचीन ने कहा एक सिंह विजयी हुआ है, यहूदा के गोत्र का सिंह, और यूहन्ना सिंह को ढूंढता है, और वो वहाँ मेमना आता है, थरथराता, उस पर लहू है, घायल, वो जयवंत हुआ। आप बता सकते हैं कि वो युद्ध में था, वो घात किया गया परंतु फिर से जीवित हो गया। यूहन्ना ने इस मेमने पर पहले ध्यान नहीं दिया, आप जानते हैं यहाँ इसका उल्लेख पहले नहीं हुआ, इसका उल्लेख पहले कभी नहीं हुआ। यूहन्ना ने इसे सारे स्वर्ग में नहीं देखा जैसे कि वो देख रहा था, परंतु यहाँ वो आता है। ध्यान दें, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आ गया, ये पिता के सिंहासन से आता है जहाँ ये बैठा हुआ था जब से वो मारा गया और फिर जी उठा, वो जी उठा और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है, सदा जीवित की बिचवाई करे, आमीन। वहाँ जीवित होकर आज एक बिचवाई करने वाला अपने ही लहू से लोगों की अज्ञानता की बिचवाई करता है। अब यही है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। वो अब भी ब्लीच से ढका हुआ है, पापों की क्षमा का ब्लीच। यूहन्ना मेमने को देखता है और मेमना ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो घात किया गया है, और फिर उसने ध्यान दिया कि वो घायल था और काटा और कुचला हुआ और लहूलुहान, एक लहूलुहान मेमना, यही जिसने हमारा स्थान लिया। क्या ये विचित्र नहीं? एक साधारण मेमने ने हमारा स्थान लिया और उसने मेमना देखा, वो आगे आया। यूहन्ना ने उसे नहीं देखा क्योंकि वो वहाँ पीछे अनंतता में था, तब भी बिचवाई कर रहा था और दर्शा रहा था कि वे जो परमेश्वर के पास आते हैं बैलों और बकरों के बलिदान के लहू के नीचे बदले वाला बलिदान, वो भी क्योंकि वे जिन्होंने इसका विश्वास किया उसकी ओर संकेत किया, तब तक लहू नहीं बहाया गया था, इसलिए वो वहाँ उन्हें साफ करने के लिए था। वो वहाँ आपको और मुझे साफ करने के लिए था। और ओ परमेश्वर, मैं आशा करता हूँ कि आज रात्रि वो वहाँ पर है हर पापी के लिए। मेमना मारा गया था, कैसे यहोवा किसी और चीज को देख सकता था सिवाय उस लहूलुहान मेमने के जो वहाँ खड़ा हुआ है। और मेमना अब दर्शन में आगे बढ़कर आया जैसे कि वो घात किया हुआ था। ध्यान दें, पिता के सिंहासन से निकलकर आया। ओ सोचिए, वो कहाँ से वो इस दर्शन में आगे बढ़ा? वो महिमा से आया। परमेश्वर के दाहिने हाथ पर वो कहाँ बैठा था? वो आगे बढ़ा यूहन्ना के पास, महिमा से निकला। ओ क्या ही ये महिमामय बात नहीं है? यदि हमारे पाप में विचार आज रात्रि एक और लंबे समय तक रखा जा सके कि उसे स्वीकार करे और वो महिमा से निकलकर आगे बढ़े, आज रात्रि की अपने आप को आप में से किसी पर प्रकट करे। मेमना महिमा से बिचवाई के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, ताकि दावा करे अपने उस छुटकारे के लिए। स्मरण रखें, वो अपने यहाँ पीछे बिचवाई के कार्य पर है, परंतु याद रखें ये मोहरे खुलने के लिए तैयार हैं। और मेमना परमेश्वर के पवित्र स्थान से निकलकर आगे बढ़ता है। प्रतीक्षा करें जब तक हम वहाँ पहुँचे। वो एक घंटा कि उस आधे घंटे को लें कि ये शांत है, पवित्र से धुआं उठ रहा है, वहाँ और बिचवाई नहीं है, बलिदान हट चुका है, ये अब न्याय का आसन है, अब उस पर लहू नहीं है क्योंकि लहू से ढका मेमना चला गया। क्या आप उस समय तक विश्वास नहीं करेंगे? याद रखें, पुराने नियम में जब तक लहू अनुग्रह के सिंहासन पर नहीं है ये न्याय था, परंतु जब लहू वहाँ पर था वहाँ अनुग्रह था, परंतु जब मेमना चला गया ये हो गया। वो क्या था? एक बिचवाई करने वाला बना रहा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। मुझे बताएं तो मरियम कहाँ बिचवाई कर सकती थी? मरियम क्या चढ़ा सकती थी? संत फ्रांसिस, संत असीसी या कोई और भी, संत सिसिलिया बल्कि, या कोई और दूसरा मनुष्य? यूहन्ना ने कभी भी हजारों संतों को बिचवाई के कार्य से बाहर आते नहीं देखा। उसने एक मेमना देखा, एक मेमना जो घात किया गया, लहूलुहान। मैं चिंता नहीं करता कितने संत घात किए गए, वे सब इस कर्ज में थे। उनमें से हर एक, जैसा कि चोर ने क्रूस पर कहा, हमने पाप किया है और हम पर ये बनता है, परंतु इस मनुष्य ने कुछ नहीं किया। वो ही केवल मनुष्य था जो योग्य था। ये वो उस बिचवाई के कक्ष से आता है, वो अब किस लिए आ रहा है? उस पर ध्यान दें। ओ प्रभु, यूहन्ना रो रहा था, वो सब कहाँ हैं? क्या होने जा रहा था? यूहन्ना मत रो, प्राचीन ने कहा, यहाँ सिंह आता है, वही एक था जो जीवंत हुआ था। जब उसने देखा तो वहाँ मेमना आता है, लहूलुहान, जो कि घात किया गया था। कोई भी जो मारा जाता है लहूलुहान है, आप जानते हैं, ये घात किया गया था, उसकी गर्दन काट दी जाती है या कुछ ऐसे ही, सारे में लहू ही लहू उस पर। यहाँ मेमना आता है जो घात किया गया था,
वो सामने आता है। ओ प्रभु, क्या अपने छुड़ाए हुओं का दावा करता है। आमीन। ओ मैं, क्या आप ऐसा अनुभव नहीं करते कि कोने में जाकर और बैठकर थोड़ी देर रोएं? यहाँ एक मेमना आता है, अब भी लहूलुहान है। यहुन्ना वहाँ पर कुछ नहीं था, सारे महान लोग चारों ओर खड़े हैं, परंतु उनमें से कोई ये नहीं कर सकता था। इसलिए अब ये यहाँ पर एक मेमना आता है, उसके बिछवाई के दिन पूरे हो गए, मध्यस्थता के दिन। यही जब ये स्वर्गदूत वहाँ खड़ा होने जा रहा है, आप प्रतीक्षा करें जब तक हम मोहरों में पहुँचे, और समय और ना रहेगा। ये ठीक बात है, वो आधी घड़ी का सन्नाटा, ध्यान दें उस आधे घड़ी के सन्नाटे में क्या हुआ। जब वो सातवीं मोहर अगले रविवार रात्रि प्रभु ने चाहा तो अब वो क्या अपना दावा करने सामने आता है। ओ प्रभु, अपना दावा लेने आता है। अब वो छुड़ाने वाला कुटुंबी का कार्य कर चुका, वो नीचे आ गया था, वो मनुष्य बन गया था, मर गया, उसने छुड़ाने वाले कुटुंबी का कार्य कर दिया, परंतु अभी तक अपने दावे के लिए नहीं बुलाया गया। अब वो अपने अधिकारों का दावा करने दृश्य पर आता है। ध्यान दें क्या घटित होता है। ओ प्रभु, वो किसके लिए घात किया गया था? क्योंकि वो निकट कुटुंबी मनुष्य के लिए हो गया कि उसके स्थान पर मर जाए, कि उसे छुड़ा ले। परंतु प्राचीन सही था जब उसने कहा वो एक सिंह था। देखा, प्राचीन ने उसे पुकार के कहा एक सिंह, क्योंकि वो एक मेमना था, एक बिचवाई करने वाला, एक लहूलुहान मेमना। परंतु अब वो एक सिंह के समान आ रहा है, उसके बिचवाई करने के दिन बीत गए। अब वो जो गंदा है अब भी गंदा है, वो जो धर्मी है अब भी धर्मी है, वो जो पवित्र है अब भी पवित्र है। वो चीजें बंद हो गईं। ओ भाई, तब क्या, तब क्या? अब स्मरण रखें, ये सातवीं कलीसियाई युग में आता है जब परमेश्वर के भेद खुल जाएंगे। अब ध्यान से सुने, ये कुछ है जो आपको लेना ही चाहिए। अब वो अपना मध्यस्थता का काम कर रहा है विश्वासी के लिए 2000 वर्षों से। वो वहाँ पीछे एक मेमना था, अब वो अनंतता से बाहर आ रहा है कि अधिकार पत्र की पुस्तक को ले ले और मोहरों को तोड़े और भेदों को प्रकट कर दे। ये कब का है? अंत समय का। क्या आप समझे? ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब मोहरें तोड़ता है और उन पर भेदों को खोल देता है, सातवें स्वर्गदूत पर, जिसका संदेश परमेश्वर के सारे भेद खोलता है। परमेश्वर के भेद इन सातों मोहरों में हैं, समझे? यही जो उसने यहाँ कहा है, सारे भेद इन सात मोहरों में हैं। और अब मेमना सामने आता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच, बिचवाई से होते हुए वो सिंह बन गया। और जब वो सिंह बन गया, वो पुस्तक लेता है, ये उसका अधिकार है। परमेश्वर ने उस भेद को रख रखा था, परंतु अब मेमना आता है। कोई भी पुस्तक नहीं ले सकता था, ये अब भी परमेश्वर के हाथों में थी। पोप नहीं, याजक नहीं, ये जो भी हो सकता है, वे पुस्तक को नहीं ले सकते थे। नहीं, सात मोहरें प्रकट नहीं की गई थीं, समझे? परंतु जब बिचवाई, जब उसका काम पूरा हो गया, एक बिचवाई करने वाले के समान वो सामने आता है। और यूहन्ना प्राचीन ने कहा वो एक सिंह है, और वो सामने आता है। अब ध्यान दें, ओ प्रभु, समझे? वो पुस्तक लेने के लिए आगे आता है। अब ध्यान दें कि परमेश्वर के भेदों को प्रकट करे, जिसका दूसरे इन सारे नामधारी युगों में होते हुए उन्होंने अनुमान लगाया। देखिए, तब सातवां दूत, यदि ये पुस्तक भेद परमेश्वर का वचन है, सातवें दूत को भविष्यद्वक्ता होना ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आना है। पादरी और पोप नहीं या कुछ भी ये पा सकता, वचन ऐसे के पास नहीं आ सकता। परमेश्वर का वचन केवल भविष्यद्वक्ता के पास आता है सदा। मलाकी 4 ने ऐसी प्रतिज्ञा की है,
और जब वो आता है तो वो परमेश्वर के भेदों को लेगा, जहाँ की कलीसिया इस सब के लिए नैतिक संकोच में, ये सारे नामधारी और बालकों का विश्वास वापस पूर्वजों की ओर, और तब संसार का न्याय आएगा और पृथ्वी जला दी जाएगी, और तब धर्मी लोग सर्व शताब्दी में दुष्टों की राख पर चलेंगे। क्या अब आप समझ गए? ठीक है। नामधारी युग में दूसरों ने अनुमान लगाया, परंतु देखिए यही व्यक्ति होना चाहिए, सातवां दूत, प्रकाशित वाक्य 10:1-4 का। सातवें दूत को परमेश्वर के भेदों को दिया गया है, जो उसे दिए गए और सारे छूटे हुए भेदों को समाप्त कर दिया, जो उन नामधारी युगों से होते हुए आए। अब आप देख सकते हैं कि क्यों मैं अपने भाइयों पर जो नामधारी में हैं प्रहार नहीं करता। ये नामधारी की व्यवस्था है, वे नहीं करते, वहाँ उनकी कोई आवश्यकता नहीं है कि ये जानने का यत्न करें, क्योंकि ये प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा, ये वचन के अनुसार है। वे इसका अनुमान लगाते हैं और विश्वास करते हैं कि ये वहाँ है, और विश्वास के द्वारा इसके साथ चलते हैं, परंतु अब ये प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध हो गया है। आमीन। ओ प्रभु, क्या ही वचन है। अब ध्यान दें, तब फिर ये वो है, वो मेमना जो अपने राजा वाले पद को लेता है, जब उसके संत उसे ताज पहनाने को आते हैं, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, समझे? देखिए, समय समाप्त हो गया, प्रकाशित वाक्य 10:6, अब समय और नहीं रहा। ध्यान दें, वहाँ सात सींग हैं इस मेमने पर, क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया? उसके सात सींग हैं, हम अभी इसमें से होकर निकले हैं। सींग का अर्थ शक्ति है पशु के लिए, और ध्यान दें, वो पशु नहीं था, क्योंकि उसने उसे जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ से पुस्तक ली, समझे? ध्यान दें, ओ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मैंने इसे कहीं पर लिखा था, ओ मोहरों के तोड़ने के लिए और उस अधिकार पत्र को खोलने के लिए और अंतिम दूत का संदेश, और वो अपना राजा वाला स्थान लेता है, यही जो वो करने के लिए आगे आया। अब ध्यान दें, जब वो बाहर आता है, वे सात सींग। अब जब उसने इस मेमने को देखा, यहुन्ना ने इसकी ओर देखा, वो घात किया हुआ मेमना था, लहूलुहान, वो अनंतता से निकल करके आया, और वो बिचवाई करने के लिए ठहर गया। तो फिर मरियम से चाहे जितनी प्रार्थना करें, वहाँ स्वर्ग में कोई मनुष्य नहीं है, और इस पृथ्वी पर या कोई व्यक्ति नहीं, कहीं भी नहीं, कोई प्राणी नहीं जो इसे ले सके, यहाँ तक कि यूहन्ना इसके विषय में रो पड़ा। ओह कैथोलिक मित्रों, क्या आप इसे नहीं देख सकते? किसी मृत व्यक्ति से प्रार्थना न करें। मेमना ही केवल एक बिचवाई करने वाला है, समझे? ये वही एक था जो आगे आया, और अब उसने क्या किया? वो यहाँ पीछे बिचवाई कर रहा था, जब तक कि उसका लहू हर व्यक्ति के लिए प्रायश्चित न कर ले। और मेमना अब जानता है कि पुस्तक में क्या लिखा है, इसलिए जगत की उत्पत्ति से पहले वो जानता था कि उनके नाम वहाँ हैं, इसलिए वो वहाँ पीछे खड़ा हुआ और केवल बिचवाई के कार्य को किया, इस प्रकार से जब तक बिचवाई का कार्य, जब तक प्रत्येक जो इस पुस्तक में है छुड़ा लिया जाए, और ये समाप्त हो गया, और अब वो बाहर चला जाता है, समझे? अपने निकट कुटुम्बी का कार्य किया, वो सब है। अब जानते हैं निकट कुटुम्बी का कार्य क्या था, प्राचीनों के सामने प्रमाणित करे। आपको याद है बोआज ने अपना जूता फेंका और आदि आदि, अब उसने ये सब कर दिया, अब वो अपनी दुल्हन को लेने आता है। आमीन। अब वो एक राजा के समान आता है, वो अपनी रानी को ढूंढ रहा है। आमीन आमीन। इस पुस्तक में इसका सारा भेद है, चारों ओर लिपटा हुआ, सात मोहरें, ओ भाई, सात मोहरें उसके आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। ध्यान दें, आइए इन प्रतीकों को लें। भाई अभी ये 9 बजे हैं, हमारे पास आगे बढ़ने के लिए 3 या उससे अधिक घंटे हैं हमारे पास हैं। आइए जरा, शैतान मुझे बताता जा रहा है कि ये लोग थक गए हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि वे हो गए, परंतु जैसे भी हो हम इसे ले लें। सात सींग सात कलीसिया काल थे, देखिए सात कलीसियाई काल, क्योंकि ये मेमने की सुरक्षा थी, उसने जो अपना अधिकार पृथ्वी पर सुरक्षित रखा, वो परमेश्वर का भेजा हुआ झुंड जो सुरक्षित है। देखिए मेमने का सींग, सात आंखें, सात कलीसियाई काल के सात संदेश वाहक, सात आंखें, सात नबी। क्या आप कुछ पवित्र लेखों को लिखना चाहेंगे? आइए इसे निकालें। आप क्या कहते हैं? आपके पास इतना समय है, ठीक है, आइए जकरिया की पुस्तक में चलें, जकरिया की पुस्तक, बस थोड़ा सा और इसमें से थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं आपको इन चीजों पर अधिक देर तक रोके रखना नहीं चाहता हूँ और मैं, परंतु फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि आप इसमें चूक जाएं। इससे अधिक विशेष क्या होगा? जी हाँ, और क्या है? क्या व्यक्ति के लिए अनंत जीवन से और क्या अधिक आवश्यक होगा? और हमें चाहिए, हमें अब ये ले लेना चाहिए और निश्चित हो जाएं कि हमें ये मिल गया है। ठीक है, ठीक है श्रीमान। और हम जकरिया का तीसरा अध्याय पढ़ना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ अब ये ठीक है। अब जकरिया तीन, हम यहाँ ये प्रतीक पाने जा रहे हैं। यदि मैंने कोई पवित्र लेख यहाँ लिख रखा है, इस दोपहर बाद सारी जगह में चिल्लाता फिरा जब मैं इस पर आया, इसलिए मैं नहीं जानता कि इस समय मेरे पास है या नहीं। मैं आशा करता हूँ मेरे पास है। जकरिया तीन, आइए देखें। यदि ये मेरे पास यहाँ नवासी है, परंतु ये 8 से 9 होना चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये नवासी नहीं हो सकता। जकरिया 3:8-9।
Hear now, O Joshua, the high priest, thou and thy fellow.
हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। सुनो, मैं अपने दास शाह को प्रकट करूंगा मसीह।
For behold, the stone that I will lay before Joshua upon.
उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के सामने रखा है, उस पत्थर, एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं, 7 आंखें। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। अब आइए जकरिया 4:10 निकालें। 4:10 सुनिए, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना? परमेश्वर सादगी में साहुल को जरुबाबेल के हाथ में देखकर आनंदित होगा। उन 7 ये प्रभु की आंखें हैं जो सारी पृथ्वी पर फिरती हैं। वे 7 आंखें, आंखों का अर्थ देखना, देखने का अर्थ भविष्यद्वक्ता। इस मेमने के 7 सींग हैं और हर एक सींग पर एक आंख है, 7 आंखें। ये क्या है? मसीह और उसकी दुल्हन, 7 कलीसियाई काल और उनमें होते हुए 7 भविष्यद्वक्ता जो निकले, 7 नबी, आंखें। इसलिए अंत वाला नबी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दें, वो कोई पशु नहीं है। उसने जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ से पुस्तक ली। ये कौन था? स्वामी, मूल स्वामी, जिसके दाहिने हाथ में छुटकारे की पुस्तक थी। और कोई स्वर्गदूत नहीं, ना स्वर्गीय प्राणी, कुछ नहीं इस स्थान को ले सका। और ये लहू लुहान मेमना बाहर निकल कर आता है और उसके हाथ से पुस्तक ले लेता है। ये क्या है भाई? वचन के अंदर ये बहुत ही महान बात है। आमीन। वो काम जो न कि स्वर्गदूत, कोई नहीं इसे कर सका। और मेमना आया और उसके दाहिने हाथ से ले लिया जो सिंहासन पर बैठा था। ये क्या है? अब ये मेमने की हो गई। आमीन। परमेश्वर की व्यवस्था ने मांग की, वही है जो इसे पकड़े हुए है। परमेश्वर की व्यवस्था छुड़ाने वाले निकट कुटुम्बी की मांग करती है और मेमना बाहर निकल कर आता है, इसे पकड़े हुए है। मैं इनका निकट कुटुम्बी हूँ, मैं इनका छुड़ाने वाला हूँ। मैं इनके लिए बिचवाई की है और अब मैं आ गया हूँ कि इनके अधिकार का दावा इनके लिए करूँ। आमीन। वहाँ केवल वही है। मैं इनके अधिकार के दावे के लिए आया हूँ। इसमें इनके पास अधिकार है हर चीज का जो कि गिरावट में खो गए थे, और मैंने दाम चुका दिया है। ओ भाई, क्या आपको अंदर से धार्मिक अनुभूति नहीं होती? अच्छे कामों से नहीं जो हमने किए, परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा। ओ, एक मिनट रुकिए। और उन प्राचीनों आदि ने अपने ताज उतारने आरंभ कर दिए और ऊंचे पद वाले नीचे उतर गए। देखिए, कोई नहीं, कोई इसे नहीं कर सका। और वो सीधा परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर गया और उसके हाथ से पुस्तक ले ली और अपने अधिकारों का दावा किया। मैं इनके लिए मरा हूँ, मैं छुड़ाने वाला निकट कुटुम्ब भी हूँ, मैं बिचवाई करने वाला हूँ। मेरा लहू बहाया गया था, मैं मनुष्य बन गया था, और मैंने ये कलीसिया को फिर से वापस लाने के लिए किया था जिसको मैंने संसार की सृष्टि से पहले देखा था। मेरा यही उद्देश्य था। मैंने ये बोला, ये वहाँ होगा और कोई इसे लेने के योग्य नहीं था, परंतु मैं नीचे गया और मैंने स्वयं ही ये कर दिया। मैं इनका निकट कुटुंब भी हूँ, मैं इनका रिश्तेदार हो गया। और उसने पुस्तक ले ली। आमीन। ओ, आज रात्रि वहाँ कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है? वो कौन है? कलीसिया जो वहाँ प्रतीक्षा कर रही है। और कौन वहाँ आपकी प्रतीक्षा कर सकता है? वो छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी। ओ प्रभु, क्या ही भव्य वक्तव्य है या व्यवहार। अब छुड़ाने के लिए उसके पास अधिकार पत्र है, ये उसके पास उसके हाथ में है। याद रखें, सारे समय ये परमेश्वर के हाथ में था, पर अब ये मेमने के हाथ में है। अब ध्यान दें, सारी सृष्टि के छुटकारे का अधिकार पत्र उसके हाथ में है, और अब वो मनुष्य जाति के लिए भी वापस दावा करने आया है। स्वर्गदूतों के लिए वापस दावा करने को नहीं, मनुष्य के लिए वापसी का दावा, जो कि फिर से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के लिए दिया गया था। वापस फिर अदन की वाटिका में लाने का, हर चीज जो उन्होंने खोई, सारी सृष्टि, पेड़, पशुओं का जीवन, हर चीज। ओ प्रभु, क्या इससे आपको अच्छा अनुभव नहीं होता है? मैंने सोचा था कि मैं थक गया, परंतु अब नहीं, समझे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि प्रचार करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, और फिर भी मुझे कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है और मैं सोचता हूँ कि मैं फिर से एक युवा हूँ। जी हाँ, ओ, ये आप में कुछ करता है, समझे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ कोई है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, कोई है जिसने दाम चुका दिया जो मैं न चुका सका। ये ठीक बात है, ये उसने मेरे लिए किया, चार्ली, तुम्हारे लिए किया, उसने ये समस्त जाति के लिए किया। और अब वो दावा करने के लिए सामने आता है कि छुड़ाने वाले अधिकारों को ले। किसके लिए दावा करे? अपने लिए नहीं, हमारे लिए। हमारे लिए वही है, वो हमारा कुटुंबी है। ओ प्रभु, वो मेरा भाई, वो मेरा बचाने वाला, वो मेरा परमेश्वर, वो मेरा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी है, वो सब कुछ है। उसके बिना मैं क्या था, या मैं उसके बिना क्या हो सकता हूँ? इसलिए देखिए, वो मेरा सब कुछ है, और वो वहाँ हमारा कुटुंबी बनकर खड़ा है, और सब वो हमारे लिए बिचवाई कर रहा है इस समय तक, और अब वो आया है छुटकारे की पुस्तक को लेने की, अपने अधिकारों का दावा करने, उसका जो उसने हमारे लिए किया। यीशु ने कहा, वे मर गए, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वे मर गए थे तो भी जिएंगे। वो जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी ना मरेगा। वो जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन है, और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। कोई मतलब नहीं वो पहली घड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं या सातवीं, जहाँ भी सो जाता है, क्या घटित होगा? परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, अंतिम तुरही फूंकी जाएगी, उसी समय अंतिम दूत को उसका संदेश दिया जाएगा और अंतिम मोहर खुल गई। अंतिम तुरही फूंकी जाएगी और छुड़ाने वाला अपने छुड़ाए हुओं का अधिकार लेने आता है। उसकी कलीसिया लहू से धुली हुई। अब सारी सृष्टि उसके हाथों में है, जिस छुटकारे की सारी योजना, सात भेद भरी मोहरों से जो इस पुस्तक में है, जो उसने ली, बंद है। अब ध्यान दें, और केवल वही अकेला प्रकट कर सकता है जिस पर भी वो चाहेगा। ये उसके हाथों में है। देखिए, अब उसने प्रतिज्ञा की है, ये उस समय होगा अब, क्योंकि ये सात भेद पूर्ण मोहरों से बंद है, ये छुटकारे की पुस्तक। अब ध्यान दें, जैसे अब मित्रों, मैंने आपको बताया मैं 8:30 बजे छोड़ दूंगा, मैंने 3-4 पन्ने छोड़ दिए कि ये लूं, इसलिए मैं चाहता हूं मैं पहले ही 9 के बाद, ताकि आप कल वापस आ सको। परंतु अब इस 7 तह वाली मोहरों की पुस्तक छुटकारे की, जिसे मेमने ने लिया अपने में, केवल एक ही था जो ये कर सकता था, और उसने ये उसके दाहिने हाथ से लिया जो सिंहासन पर बैठा था। अब उसके छुड़ाए हुओं का दावा, कि अपने अधिकार का दावा करे। आपके और मेरे लिए दावा करे जो कि उसने हमें छुड़ाया कि फिर से हर चीज को देखें जो आदम ने अदन की वाटिका में खो दी थी, वो हमें छुड़ाकर वहीं वापस ले आया। अब मेमने के साथ पुस्तक के साथ जो उसके हाथों में है, हम उससे उसका अनुग्रह मांगने को तैयार हैं, और हम पर अनुग्रह करे कि सात मोहरों की पुस्तक हमारे लिए खोले और बीते समय के पर्दे के पार देखें थोड़ा सा। ओ प्रभु, ध्यान दें, जब उसने पुस्तक ली, मोहर बंद अधिकार पत्र, अब इसे अपने मस्तिष्क में रख लें, और भेद भरी मोहरों को तोड़ा कि उन पर प्रकट करे कि उन्हें अपने उस पर लाए। देखिए, उसके सारे छुड़ाए हुए लोग। अब जब हम मोहरों में इस पर आते हैं तो हमें वहाँ वापस जाना है और उन प्राणों को जो वेदी के नीचे हैं देखना है, चिल्ला रहे हैं, प्रभु और कितना समय, प्रभु और कितना समय। और यहाँ वो एक मध्यस्थ के समान वेदी पर थोड़ी देर और, जब तक कि और तुम्हारे समान दुख उठाने वाले। परंतु अब वो यहाँ से आता है इस अंतिम मोहर पर, अब और बिचवाई करने वाला नहीं, वो अब राजा है। और वो क्या करता है? यदि वो राजा है तो उसके पास प्रजा होनी ही चाहिए, और उसकी प्रजा वे हैं जो छुड़ाए गए हैं, और वे तब तक उसके सामने नहीं आ सकते जब तक वो छुटकारे के अधिकार नहीं ले लेता। और अब वो बिचवाई से सामने आता है, जहां मृत्यु हमें कब्र में डालती है, वो अधिकारों के साथ आता है। आमीन। और वे भी जो जीवित हैं उसके आने तक रुके रहेंगे, उनसे जो सोते हैं आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी उस अंतिम तुरही पर, जब अंतिम मोहर तोड़ी गई और जब सातवां दूत अपना संदेश दे रहा है, अंतिम तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ मिलकर उठा लिए जाएंगे कि उससे हवा में मिलें। वो दावा करता है, अब वो अपना दावा करने को सामने आता है, उसका अधिकार। ध्यान दें, इसे देखिए, ओ मोहर तोड़ी, भेद प्रकट कर दिए, उन्हें प्रकट किया, कहां? अंतिम कलीसियाई युग को, केवल वही जो जीवित हैं, बाकी सो रहे हैं। उसने कहा यदि वो पहली घड़ी में आता है, दूसरी घड़ी में, तीसरी घड़ी और होते हुए सातवीं घड़ी, वहाँ एक आज्ञा निकलती है या एक पुकार, देखो दूल्हा आता है। और जब उन्होंने किया, वो सोई हुई क्वारी नाम की कलीसियाएं, कहा ओ आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, मैं भी वो पवित्र आत्मा लेना चाहता हूँ। क्या आपने प्रेस्बिटेरियन और एपिस्कोपलियन पर ध्यान दिया? क्या आपने फिनिक्स में मेरा संदेश सुना, उनके लिए जो खड़े हुए थे आवाज में, और वहाँ कहा जा रहा था कि भाई इस लेखक के साथ क्या मामला है, कह रहा है पवित्र पिता अमुक अमुक, जबकि बाइबल ने कहा इस प्रकार से किसी मनुष्य को पिता न कहना। देखिए वे उसके साथ सो रहे हैं, यही कारण है। परंतु जब से वे सामने आए और कहा हाँ हम विश्वास करते हैं, एक स्त्री ने दूसरी स्त्री को पुकार कर कहा मैं एपिस्कोपलियन हूँ, बोली मैंने भाषा बोली है, उस दिन मैं विश्वास करती हूँ, मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है, परंतु किसी को बताना नहीं। मुझे इसमें बहुत संदेह है, आप भाषाओं में बोल सकते हैं, परंतु आप एक मनुष्य को उत्तेजित कर दें तो वो कैसे शांत होने जा रहा है? ये ठीक बात है, समझे, इसे नहीं कर सकता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पतरस और याकूब यहुन्ना और वे ऊपर की कोठरी में कह रहे हैं ओ अब हमें पवित्र आत्मा मिल गया है, परंतु अच्छा हो कि हम शांत रहें। भाई खिड़कियों दरवाजों से होते हुए और हर चीज से वे निकलकर सड़क पर आ गए, पिए हूँ जैसा व्यवहार करने लगे, ये वास्तविक पवित्र आत्मा है। परंतु आप देखिए सोई हुई क्वारी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो भी है ओ ये ठीक बात है। और स्मरण रखें, जबकि वे तेल खरीदने के यत्न में जा रही थी, याद रखें वचन ये नहीं कहता कि ये उन्हें मिला, परंतु जब खरीदने का यत्न करने के लिए बाहर थीं, वहाँ एक पुकार हुई, क्या हुआ? वे सारी कुंवारियाँ जो सोई हुई थीं जागकर अपने चिरागदान सही करने लगी और भोज में भीतर चली गईं, क्या ये ठीक बात है? और बाकी पीड़ा के समय के लिए पीछे रह गईं, ठीक है? रोना, विलाप और दांतों का पीसना, ये कलीसिया है, ना कि दुल्हन। कलीसिया, दुल्हन भीतर चली गई, कलीसिया और दुल्हन में कुल मिलाकर यही अंतर है। जी हाँ श्रीमान, ओ विवाह के भोज में अंदर चली गई। ओ लड़के ध्यान दें, ये मोहरें तोड़ दी गई थीं, क्यों? अंतिम कलीसियाई युग में की सत्य को प्रकट कर दे। क्यों? मेमने ने मोहरे तोड़ी और अपनी कलीसिया पर प्रकाशित कर दी ताकि अपनी प्रजा को अपने राज्य के लिए इकट्ठा करे। उसकी दुल्हन देखा, ओ प्रभु, वो अब अपनी प्रजा को अपने पास लाना चाहता है। ये क्या है? भूमि की मिट्टी में से, समुद्र की तलहटी से, खड्डों में से, हर चीज में से और हर स्थान से, अंधकार के क्षेत्रों में से, स्वर्ग लोक, वे जहाँ कहीं भी हो सकते हैं, वो बुलाएगा और वे उत्तर देंगे। आमीन आमीन। वो बुलाएगा और वे उत्तर देंगे। वो अपने लोगों को लेने के लिए आता है। उसने अपने भेद प्रकट कर दिए और उन्होंने इसे देख लिया है। और समय और नहीं है। उस समय समय समाप्त हो गया। ये समाप्त हो गया। ठीक है, वो सिंहासन को छोड़ता है एक मध्यस्थ होने को, एक हाथ किए हुए मेमने के समान सिंह होने के लिए राजा की संसार का न्याय लेकर आए, जिसने उसके संदेश को अस्वीकार किया। वो एक बिचवाई करने वाला नहीं है। अब पुराने नियम की शिक्षा को याद करें, जैसा कि हम जल्दी कर रहे हैं। जब लहू अनुग्रह के सिंहासन से हट गया, ये क्या था? न्याय का आसन। जब मेमना घात किया गया, अनंतता से निकलकर आता है पिता के सिंहासन से और अपने अधिकार को ले लिया, ये एक न्याय आसन है। तब वो एक मेमना नहीं परंतु एक सिंह राजा है, और वो अपनी रानी को पुकारता है कि आकर उसके बराबर में खड़ी हो। क्या तुम नहीं जानते कि संत पृथ्वी का न्याय करेंगे? डेनियल ने कहा, न्याय का सिंहासन लगाया गया और पुस्तकें खोली गई थी और हजारों हजार लोगों ने उसकी सेवा की, राजा और रानी। और दूसरी पुस्तक खोली गई थी जो कि जीवन की पुस्तक थी, ये कलीसिया के लिए, और रानी और राजा वहाँ खड़े हैं। चरवाहे के ध्यान साधना ने कहा, गत रात्रि जैसे कि प्रेरी पर लेटा था, मैंने आकाश के सितारों को ताका और मुझे आश्चर्य हुआ, यदि हर चरवाहा उस मीठी अलविदाई की ओर मुड़े तो वहाँ एक मार्ग है जो कि चमकदार प्रसन्नता का क्षेत्र, परंतु ये वहाँ धुंधला है, एक पगडंडी, इसलिए वे कहते हैं, परंतु चौड़ा वाला जो विनाश की ओर ले जाता है, नियुक्त और धधका हुआ सब प्रकार से। वे किसी और महान स्वामी की बात करते हैं। वो अपने पशुओं के जीवन वाली भाषा के शब्दों में बोल रहा है। यदि आप कभी आसपास रहे हों तो आप इसे स्पष्ट रूप में देख सकेंगे। वे दूसरे महान स्वामी के लिए बोलता है और उसका स्थान कभी भी नहीं भरता, इसलिए वे कहते हैं वो सदा पापी के लिए स्थान बनाता है जो उस सीधे सकरे मार्ग की ओर मुड़ता है। वे कहते हैं वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो सारे व्यवहार को जानता है और देखता है। उस सुरक्षा के लिए अच्छा हो कि हम चिन्हित हो जाएं, क्या हमारा नाम उसकी महान लेख पुस्तक में है? क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ एक महान जमघट होगा जब चरवाहे कुत्तों के समान सामने खड़े होंगे, न्यायी घुड़सवारों के द्वारा चिन्हित होने को, वे भविष्यवक्ता और नबियों जो नियुक्त किया हुआ है और हर चिन्ह को जानता है। यदि आप कभी भी उस जमघट में हुए, देखिए स्वामी वहाँ खड़ा होता है और वे घुड़सवार और ठप्पा पशुओं के झुंड में वो अपना ही चिन्ह जाने के लिए देखेगा, और वो स्वामी को संकेत करेगा और स्वामी इसे देखेगा और उसे हाँ कह देगा। उसका खच्चर अंदर जाएगा, इधर उधर, ये ठप्पा सिंगों पर का चिन्ह इस प्रकार, और अपनी गायों को अलग कर लेता है, समझे? वे कहते हैं वहाँ एक बड़ा जमघट होगा और चरवाहे कुत्तों के समान खड़े होंगे, न्याय के घुड़सवारों के द्वारा वे चिन्हित किए जाएंगे, ये नियुक्त किए हुए और हर चिन्ह को जानते हैं, समझे? इसलिए उसने कहा, मेरा अनुमान है मैं एक भटका हुआ बालक, मात्र एक मनुष्य जो मरने के लिए दोषी, बिना चिन्ह का, वो वेज जिनका सूप बनाया जाता है, देखा, जो कि झुंड में गवारूपन के साथ काट दिया जाएगा जब उन घुड़सवारों का स्वामी आएगा। देखिए ये कौन है, घुड़सवारों का स्वामी जो कि मेमना है, उन सात संदेश वाहकों का जो कि नियुक्त किया हुआ और हर चिन्ह को जानता है, समझे? ध्यान दें, यहाँ वो आता है बिचवाई करने वाले के समान, घात किए मेमने के समान, सिंहासन को छोड़ देता है कि एक सिंह हो जाए, राजा की समस्त संसार को न्याय में ले आए, जिसने अस्वीकार किया।
हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी, तब सब पर राजा है। क्यों? उसके पास अधिकार पत्र है छुटकारे का, ये सब उसके हाथों में है। मैं आनंदित हूँ कि मैं उसको जानता हूँ, समझे? तब अपने उत्तराधिकार का दावा करता है, ये कलीसिया है, वो दुल्हन, वो इसका दावा करता है। तब वो क्या करता है? वो अपने प्रतिद्वंदी को निपटा देता है, शैतान को। वो उसे आग की झील में फेंक देता है, उन सब के साथ जो शैतान के द्वारा प्रेरित किए गए कि उसके छुटकारे के वचन को अस्वीकार करे। अब वो राजा है, अनुग्रह अब भी सिंहासन पर है। आप उसके निमंत्रण को अस्वीकार ना करें, समझे? घुड़सवार जानता है कि आप कौन हैं, और अब उसका प्रतिद्वंदी, जिसने उसे 2000 वर्षों से परेशान कर रखा, दावा कर रहा था, मैं जो चाहूं उनके साथ कर सकता हूं, ये अब भी मेरे पास हैं, ये मेरे हैं। मैं उन्होंने वहां पीछे अपना स्वामित्व खो दिया, परंतु वो छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी है। उसने कहा अब वो यहाँ उनके बिछवाई के लिए वापस आ गया है, परंतु किसी दिन वो कहता है मैं उन्हें कब्र में डाल दूंगा, परंतु उसने कलीसिया को बता दिया मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, समझे? परंतु पहले मुझे बिछवाई करने वाला बनना है। अब वो सामने आता है, पीछे अनंतता से बाहर कदम निकालता है, पिता के सिंहासन में से, जहाँ वो बिछवाई करने वाले के समान बैठा था। अब वो राजा होने के लिए आता है, ओ लोहे के राजदंड से सारे राष्ट्रों पर राज्य करने के लिए, न्याय तय हो गया। ओ भाई, हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी सब पर अधिकार रखता है, ये ठीक बात है। जी हाँ श्रीमान, वो क्या करता है? वो अपने प्रतिद्वंदी के हाथ को पुकारता है, शैतान अब ये मेरे हैं, मैंने इन्हें कब्र में से जिला लिया है। वो सारे झूठों को लेता है और वचन को दूषित करने वालों को और सब इस प्रकार के शैतान के साथ और आग की झील में उनको नष्ट कर देता है। अब वो दुल्हन सबके ऊपर है, उन्हें आग की झील में फेंक देता है। ओह प्रभु, आप जानते हैं क्या, मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ इसके पहले कि मैं बंद करूँ, और फिर हम जल्दी जल्दी करेंगे। ध्यान दें, अब हम यहाँ 7वें पद पर हैं, परंतु 8वें पद से 14वें पद तक मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि क्या घटित होता है। वे सब जो स्वर्ग में थे और वे सब जो पृथ्वी पर थे, अब जरा इसे सुने, मैं अब जरा इसे पढ़ दूं, मैं विश्वास करता हूं कि ये अच्छा रहेगा यदि मैं इसे पुस्तक में से पढ़ दूं, 7वें पद से और 6ठे पद पर ध्यान दें। और मैं देखो, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, उसके सिर या 7 सींग और 7 आंखें थीं। मेरा अर्थ, हमने इसे अभी स्पष्ट किया है, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। देखिए, 7 कलीसिया युग, 7 संदेशवाहक जिन्होंने वो आग जलाई रखी, समझे? ठीक है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। अब ध्यान दें, जब उसने ये कर दिया, देखिए क्या हुआ। आप जुबली के विषय में बातें करते हैं, अब ये ठीक उन मोहरों का तोड़ना है, घटित होता है, हम इसमें जाएंगे, आधा घड़ी का सन्नाटा, ठीक इसके बाद इस पर ध्यान दें और हम इसे आरंभ करेंगे, हम इसे अगले रविवार रात्रि में समाप्त करेंगे, ठीक यहीं। अब जरा इसे ध्यान से सुने, क्या आप तैयार हैं? कहें आमीन। ध्यान से सुने, जब उसने ये किया तो क्या घटित हुआ? जब सारी सृष्टि कह रही थी, कोई नहीं जानता था कि क्या करे, और यूहन्ना रो रहा था, यहाँ मेमना निकल कर आता है, और ये पुस्तक मूल स्वामी के हाथों में थी, क्योंकि मनुष्य गिर गया था और इसे खो दिया था, और कोई भी मनुष्य से लेने के योग्य नहीं था, कोई और भी कि पृथ्वी को छुड़ाए, ना याजक, पोप, कुछ भी नहीं, जैसा कि मैंने कहा। परंतु मेमना आया, मरियम नहीं, संत नहीं, ये या वो संत, मेमना आता है, लहू लुहान, खात हुआ, और पुस्तक को उसके दाहिने हाथ से ले लिया जो सिंहासन पर बैठा था, और जब उन्होंने देख लिया कि वहाँ एक छुड़ाने वाला था, और सारे प्राण जो वेदी के नीचे थे, जब स्वर्गदूत, जब प्राचीन लोग, जब हर चीज ने ये देखा कि ये किया गया, ये अब भी भविष्य में है, आज रात्रि वो एक बिछवाई करने वाला है,
परंतु वो इस पर आ रहा है। ध्यान दें, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हरेक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये वे जो वेदी के नीचे जिन्होंने बहुत पहले प्रार्थनाएं की, देखिए, उन्होंने छुटकारे के लिए प्रार्थनाएं की, पुनरुत्थान के लिए प्रार्थनाएं की, और यहाँ ये प्राचीन लोग अपनी प्रार्थनाएं सामने उंडेल रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक प्रतिनिधि है, हमारे पास स्वर्ग में एक निकट कुटुम्बी है जो दावा करने के लिए सामने आता है, और वे नया गीत गाने लगे, तू उस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया कि हम पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वे वापस आना चाहते थे और यहाँ ये वापस आ रहे हैं राजा और याजक होने को। परमेश्वर की महिमा हो। भाषाओं में बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ध्यान दें, जी हाँ, ये ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास पर्याप्त भाषा नहीं है मैं इसके साथ उसकी प्रशंसा कर सकूं। मुझे उसकी जरूरत है जिसको कि मैं जानता भी नहीं। ध्यान दें, और मैंने देखा, इसे सुनिए, और मैंने देखा बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। सुनिए, क्या ही जयंती हो रही है जब उन्होंने देखा कि मेमने ने आकर छुटकारे की पुस्तक को ले लिया। प्राण चिल्ला उठे, हम इसे लेंगे। सब, हर चीज, प्राचीन लोग गिर पड़े, उन्होंने संतों की प्रार्थनाओं को उंडेल दिया। क्या वहाँ एक निकट कुटुम्बी हमारे लिए प्रतिनिधि बना? वे अपने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने एक गीत गाया और कहा, तू ही योग्य है क्योंकि तू ही वध हुआ था। ध्यान दें, क्या इन स्वर्गदूतों को देखें, और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। ध्यान दें, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। स्वर्ग में क्या ही जयंती चल रही है जब वो मेमना अगुवाई करता है और उस बिछवाई के कष्ट को छोड़ता है और यहाँ अपने दावे को कब्जा लेने आता है। आप जानते हैं, ये यूहन्ना से आगे हुआ, उसने अपना नाम वहाँ लिखा हुआ देखा होगा जब वे मोहरें तोड़ी गईं। उसे वास्तव में बहुत ही आनंदित हो जाना चाहिए। सुनिए उसने क्या कहा, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुन्द्र की हर सृजी हुई वस्तु को और सब कुछ को जो उसमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगन युग रहे। आमीन, आमीन और आमीन। ओ, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और 2400 प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया जो सदा सदा तक जीवित है। जुबली के विषय में बात करते हैं, समय के विषय में बात करते हैं। जब वो मेमना आगे बढ़कर आया, देखिए, वो पुस्तक स्वर्ग में यहाँ तक कि 7 मोहरों से बंद है, भेद है। कहते हैं, क्या मेरा नाम वहाँ है? मैं नहीं जानता। मैं आशा करता हूँ ये है, परंतु यदि ये है तो ये संसार की सृष्टि से पहले वहाँ लिखा था। परंतु पहली बात, जिसने छुटकारे का प्रतिनिधित्व किया, मेमना आता है जो कि सृष्टि के रचने से पहले घात किया गया, और उसने पुस्तक ली, महिमा हो, पुस्तक को खोल दिया और मोहरों को तोड़ दिया और नीचे पृथ्वी पर भेज दिया अपने सातवें दूत के पास कि उसके लोगों पर प्रकट कर दे। आप वहाँ हैं, ओ प्रभु, क्या हुआ? चीखे, चिल्लाना, हेलुलिया, अभिषेक किया हुआ, शक्ति, महिमा, प्रकटीकरण, और बूढ़ा यूहन्ना जो वहाँ खड़ा हुआ था, हमारा भाई चिल्ला रहा है, क्यों? उसने कहा, सब कुछ जो स्वर्ग में है, हर चीज जो पृथ्वी पर है, हर चीज जो समुद्र में है, मुझे चिल्लाते हुए सुना। आमीन, आमीन, धन्यवाद, आदर और सामर्थ और शक्ति उसका है जो सदा और सदा के लिए जीता है। आनंद के समय के विषय में बात करते हैं, जब वे मोहरें तोड़ दी गईं, यूहन्ना ने अवश्य ही उसमें देखा होगा और बीते समय के पर्दे के पार और कहा, वहाँ यूहन्ना है। ओ, वो इतना प्रसन्न था कि जब तक कि उसने कहा, हर चीज जो स्वर्ग में है उसे वास्तव में चिल्लाना चाहिए, क्या उसे नहीं? हर चीज जो स्वर्ग में है, हर चीज जो पृथ्वी में, हर चीज पृथ्वी के नीचे, हर प्राणी, हर चीज ने मुझे कहते सुना आमीन। धन्यवाद और महिमा और बुद्धि और सामर्थ्य और शक्ति और धन उसका है, आमीन। क्यों? जब प्रकाशन आता है कि मेमना छुड़ाने वाला हमारा निकट कुटुंबी बिचवाई के सिंहासन से वापस आ गया और यहाँ निकल कर बाहर आया कि अपना अधिकार ले, ओ जल्दी ही मेमना अपनी दुल्हन को लेगा कि सदा उसके बराबर में रहे, स्वर्ग की सारी सेना जमा होगी, ओ ये महिमा युक्त दृश्य होगा, सारे संत बेदाग सफेदी में और यीशु के साथ हम अनंत राज्य करेंगे, ओ आओ और खाओ, स्वामी बुलाता है वचन पर, आओ और खाओ, ओ मेरे पास शब्द नहीं है, देखिए, आओ और खाओ, आप यीशु के मेज पर किसी भी समय भोजन कर सकते हो, अब परंतु जब वो छोड़ता है तो फिर कोई आशा नहीं, वो जिसने भीड़ को खिलाया पानी को दाखरस में बदल दिया, वो जिसने कहा वो जो मुझ पर विश्वास करता है जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, ओ प्रभु, वो जिसने इन चीजों की प्रतिज्ञा दी है इन अंत के दिनों में, वो जिसने ये बातें कही हैं, वो जो अब प्रकाशन के समय में है इन चीजों की प्रकट कर रहा है, आओ और खाओ, ओ इसे छोड़ो मत मेरे भाई, अब आइए हम अपने सिरों को झुकाएं एक मिनट के लिए। कल रात्रि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उस पहली मोहर को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, यदि परमेश्वर इसे हमारे लिए तोड़ेगा और हम देखें कि ये प्रकाशन क्या था, पृथ्वी के रचने से पहले छिपा था। इसके पहले हम ये करें, पापी मित्र या गुनगुनी कलीसिया के सदस्य, क्या तुम्हारे पास बस एक कलीसिया की सदस्यता है या क्या तुम्हारे पास सदस्यता नहीं है? और यदि आपके पास केवल सदस्यता है तो बहुत ही जल्द आप इससे रहित हो जाएंगे। आपको एक जन्म की आवश्यकता है, आपको लहू के पास आना चाहिए, आपको किसी चीज के पास आना चाहिए जो पाप के दागों को हटा दे, यहाँ तक कि उनका स्मरण भी ना रहे। यदि आपने तैयारी नहीं की है अभी भी कि मेमने से हवा में मिलें और उस सामर्थ्य के द्वारा जिस प्राधिकार का अधिकार मुझे मिला है, जो सर्व सामर्थी परमेश्वर के द्वारा दिया गया है और एक स्वर्गदूत के द्वारा सेवकाई के लिए मुझे मिला एक अग्निस्तंभ, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आज्ञा देता हूँ, उससे केवल कलीसिया की सराय की सदस्यता से मिलने का प्रयास ना करें जो इस पृथ्वी की है। आइए, जबकि बिचवाई करने वाला जहाँ तक मैं जानता हूँ अब भी सिंहासन पर है और बिचवाई कर रहा है, क्योंकि एक दिन आएगा जब आप आना चाहेंगे और वहाँ कोई बिचवाई करने वाला नहीं होगा, क्योंकि यदि हम देखते हैं कि वो घड़ी जिसमें हम जी रहे हैं सातवीं कलीसिया के युग में और परमेश्वर के भेद वो जो हो गए उस परमेश्वर के आत्मा से प्रमाणित हुए इन अंत के दिनों में हर चीज जिसकी प्रतिज्ञा हुई दर्शा रहा है, तो फिर कितना समय बचा है? पापी मित्र आ जा, प्रभु यीशु, घड़ियां समाप्ति की ओर बढ़ती जा रही हैं। ये हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं उससे देर हो जाए, और इस आती हुई घड़ी को देखने के लिए आनंदित हैं। ये बहुत महिमामय घड़ी है जो कि संसार ने कभी जाना एक विश्वासी के लिए, परंतु अस्वीकार करने वाले के लिए सबसे दुख भरा समय जो कभी हो सका हो, वर्णमाला में इसके लिए शब्द नहीं मिल सकेंगे, अक्षर कि शब्द बने जो कि पीड़ाओं और दुख को प्रकट कर सकें जो आगे रखे हैं, और न ही कोई शब्द जो बनाए जा सकें उन अक्षरों से कि आशीषों को प्रकट कर सके जो विश्वासी के लिए आगे रखे हैं।
Father,
पिता, हो सकता है आज रात्रि कुछ लोग यहाँ बिना आशा के हैं और वे बुद्धिमान मनुष्य हैं, और अब यदि लहू अब भी अनुग्रह के आसन पर है तो मेमना सिंहासन से उठकर आज रात्रि उनके हृदय में आए और उन पर प्रकट कर दे कि वे नष्ट हैं, और लहू के हाथों के साथ कहें आ जाओ, जबकि ये समय है आने का। प्रभु, मैं संदेश को आपके हाथों में अपनी प्रार्थना के साथ समर्पित करता हूँ। आप जो चाहें करें पिता, यीशु के नाम में। अपने झुके हुए सिरों के साथ, यदि आप इस निवेदन और इस मांग के साथ सही नहीं बैठते, यदि आपने केवल अपनी कलीसिया का ही विश्वास किया है, वहाँ कुछ नहीं था जो छुड़ा सके। यदि आप किसी संत की बिचवाई में भरोसा करते हैं तो आप अब भी नष्ट हैं। यदि आप अपने हाथों के कार्यों में विश्वास करते हैं, कुछ ऐसा जो आपने किए अच्छे कार्य, आप नष्ट हैं। यदि आपने अपनी माँ की प्रार्थनाओं में विश्वास किया या अपनी माँ की धार्मिकता में, आपकी पिता की, यदि आपने इनमें भरोसा किया है, आप नष्ट हैं। यदि आपने अपनी संवेदनाओं, कुछ विचित्र अनुभवों में, कुछ उत्तेजनाओं, भाषाओं के बोलने के साथ या नाचने में, यदि इस सब में आपने भरोसा किया है और मेमने को व्यक्तिगत रीति से नहीं जानते, उसे नहीं जानते, तो फिर मैं आपको परमेश्वर के सामने आज्ञा देता हूँ, चीजों को अब परमेश्वर के साथ सही कर लें। अपने हृदय के अंदर प्रार्थना करें और बस सादगी में रहें, क्योंकि परमेश्वर साधारणता में छिपता है। आप याद रखें कि बाइबल ने कहा, जितनों ने विश्वास किया मिला लिए गए थे। और जबकि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप अपना वो अनंत वाला निर्णय लेंगे। प्रभु, मैं कहूंगा हाँ, और एक निर्णय एक चट्टान है, परंतु उस चट्टान का क्या लाभ बिना मिस्त्री के जो उसे काट सकता है कि भवन को आकार दे और भवन में सही बैठे। तो फिर पवित्र आत्मा आपको कांटे छांटे उससे जो आप हैं, उसमें जो आपको होना चाहिए। यदि आप बस एक घमंडी कलीसियाई सदस्य हैं, यदि आप एक पापी हैं, आप जो भी हैं, यदि आप बिना मसीह के हैं, बिना पवित्र आत्मा के, परमेश्वर आपको आज रात्रि शांति प्रदान करे। और प्रभु, जैसे संतुलित अवस्था, जैसे कि मैं जानता हूँ कि कैसे आए, और वचन के अनुसार जैसा मैं जानता हूँ कि कैसे आए, मैं इनके साथ आता हूँ जो आपको मैंने समर्पित किए हैं वचन के साथ। प्रभु, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि वचन ने लोगों के हृदयों में आज रात्रि अपना स्थान पा लिया है। अब यदि यहाँ कोई ऐसा हो जो नहीं जानता या पवित्र आत्मा के मीठी उपस्थिति का विश्वास न रखता हो जो उनके जीवन में हो, वो स्वभाव या उपेक्षा या स्वार्थीपन या कुछ जिसने इस महान चीज को उनसे अलग कर दिया और इन्हें इससे दूर रखा, या कोई मत्सार या कोई संवेदना ने उन्हें परमेश्वर की मिठास वाली संगति से अलग रखा है कि वो अब उससे छुटकारा मिल जाएगा, और वो मेमना जो लहू लुहान पवित्र निकट कुटुंबी जो सिंहासन से निकलकर सामने आया, उस रहस्यवादी ज्योति से होते हुए परमेश्वर के सिंहासन के गलियारे से अपने उत्तराधिकार का दावा करने चलकर बाहर आया। परमेश्वर, आज रात्रि प्रदान करें कि वे उसे स्वीकार करेंगे। प्रत्येक निर्णय पवित्रता से किया जाए और होने पाए वे अपना समर्पण केवल उसी को करें जो उन्हें काट छांट कर परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में ढाल दे। अब औपचारिक प्रार्थना में मैं इस प्रकार कर रहा हूँ जिस प्रकार करने की अगुवाई अनुभव कर रहा हूँ। परमेश्वर के सामने पवित्रता में, जैसा कि उसने स्वयं को आपके ऊपर प्रमाणित किया, और आप एक मसीह नहीं थे और आप वो नहीं थे जो हम कहते हैं, न कि एक नामधारी वाले सदस्य, परंतु मेरा अर्थ नया जन्म पाया हुआ मसीही, परंतु आप गंभीरता में विश्वास करते हैं कि संदेश सच्चा है, और आप गंभीरता में विश्वास करते हैं आप केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही बचे हैं। और आप विश्वास करते हैं कि वो अब आपके हृदय से बातें कर रहा है और आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं और उसके वचन के लिए तैयार हैं और उससे काट कर अलग करें जो आप हैं और आपको वो बनाए जो आपको होना चाहिए। क्या आप भी वही गवाही अपने पैरों पर खड़े होने के द्वारा देंगे? यदि वो व्यक्ति यहाँ है और आपको वो बनाना चाहता है, वो सर्व पर्याप्त अपने पांव पर खड़े हो जाएं।
Heavenly Father, I know not no more what to do, but the court.
स्वर्गीय पिता, मैं अधिक नहीं जानता कि क्या करूं सिवाय कि आपके वचन का उल्लेख करूं। यहाँ लोग अपने पैरों पर खड़े हैं जो ये अनुभव करते हैं कि वे वहाँ नहीं थे जहाँ उन्हें होना चाहिए, उस उठा लिए जाने के लिए तैयार, क्योंकि हो सकता है ये पहली मोहर हमारे लिए खोली जाए उससे पहले हो जाए। और पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके एक दास के समान इस प्रार्थना को महान बिचवाई करने वाले मसीह को चढ़ाता हूँ। जैसे कि वे प्रार्थना करते हैं, मैं अपनी प्रार्थना उनके साथ चढ़ाता हूँ परमेश्वर के हाथी दांत के सिंहासन पर, जहाँ वो लहू लुहान बलिदान आज रात्रि वहाँ उपस्थित है, और किसी भी विशेष समय वो सिंहासन से आगे बढ़ जाए, सामने आकर अपने अधिकार का दावा करे, फिर वहाँ और अनुग्रह ना रहे, ये न्याय है। प्रभु, प्रदान करें कि ये लोग जो अपने पैरों पर हैं, जो कि खड़े हैं, अपने हृदयों में प्रायश्चित कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें ढाले, उन्हें छांटे और जीवते पत्थरों के आकार में ले आए, प्रभु परमेश्वर के भवन में पिता इसे स्वीकार करें। अब मैं इन्हें आपको समर्पित करता हूँ। और आपने कहा, वो जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, उसे मैं अपने पिता के और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। और अब आप वहाँ बैठे हुए हैं आज रात्रि उन सब की उपस्थिति में, और वे खड़े हुए आपको स्वीकार कर रहे हैं। और प्रभु, यदि ये इनके हृदय की गहराई से है, वैसे ही जैसे परमेश्वर का वचन निश्चित है, सही है, अब आप उनके लिए बिचवाई का कार्य कर रहे हैं और उन्हें अनुग्रह और दया के क्षेत्र में जो बलिदान किए हुए मेमने का शुद्ध करने वाला लहू है, और ये आपके होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब आप देखते हैं कि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हैं, ये युवा पुरुष ठीक यहाँ, और वे खड़े हैं। आप जो अनुभव करते हैं कि सारे पाप और दोष समाप्त हो गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप जो उनके समीप हैं खड़े हो जाएं, उनसे हाथ मिलाएं और कहें, भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा, बहन मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। बस उनसे हाथ मिलाएं और कहें, परमेश्वर आपको आशीष दे, और अब बाकी सर्व सामर्थी के हाथ में है, कहें मैं प्रार्थना करूंगा और मैं वो सब करूंगा जो आपकी परमेश्वर के राज्य में सहायता कर सकता हूं। ओ आज बुला रहा है, ओ यीशु बुला रहा है, वो आज प्रेम से बुला रहा है। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या ये अद्भुत नहीं है? ओ, हम इसके बिना क्या करेंगे? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा, परंतु हर वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, मनुष्य जीवित रहेगा। ओ, मुझे खिलाएं प्रभु वचन पर, आपस में मिलना जुलना ना छोड़ें, जैसे कि अविश्वासियों की रीति है, और जैसे तुम उस दिन को अधिकाधिक समीप आते देखो। परमेश्वर ने चाहा तो कल आने वाली रात्रि में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं मुझ में जो सब है उसके साथ उससे मध्यस्थता मांगता हूँ, इन मोहरों के भेद की मध्यस्थता करे जिससे वे टूटती है। परमेश्वर का वचन लोगों के लिए घोषित होगा। जब तक मैं आपसे ना मिलूं, परमेश्वर आपके साथ हो। और अब मैं सेवकाई को अपने कुलीन भाई नेविल को देता हूँ।
पास्टर, कितने भाई नेविल से प्रेम करते हैं। अब हम सब करते हैं। भाई नेविल सामने आए। भाई नेविल, परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई
expect great things of the Lord as we have already received from His bountiful hand. Shall we bow our heads together in a word of prayer? Heavenly